السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، آمين. آج هم إن شاء الله تعالى سورة البقرة آيات نمبر 75 سے 83 تک کریں گے. دیکھتے ہیں پہلے لفظی ترجمہ. ا کیا، ف پھر، تطمعون، تا شروع میں تو تم اور بیچ میں تما ہے. تما اردو میں بھی بولتے ہیں، تما رکھنا، لالچ رکھنا، امید رکھنا، ہرس رکھنا. تم امید رکھتے ہو یا تم ہرس رکھتے ہو، ان کے یو مینو وہ ایمان لائیں گے، واو الف اینڈ میں تو جمع ہے، لکم تمہارے لیے، و حالانکہ، قد تحقیق، کیا نہ ہے، فریقن ایک فریق، ایک گروہ، منہم ان میں سے، یسمعون جو سنتا ہے، سما سے، کلام اللہ اللہ کا کلام، ثم پھر، یحرفون وہ تحریف کرتے ہیں، حرف سے ہے یہ، اور حرف کہتے ہیں کنارے کو، تو کنارے پہ کر دینا یعنی بات کو کچھ بدل دینا، ایک سائڈ پہ لگا دینا بات کو، تو تحریف اسی سے ہے، کوئی چینجنگ کر دینا. من بعدی، بعد اس کے، ما جو، اقلو ہو سمجھ لیا انہوں نے، ہو اس کو، وہم اور وہ، یعلمون وہ جانتے ہیں، وَإِذَا لَقُوا اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں، الَّذِينَ آمَنُوا ان لوگوں سے جو ایمان لائے، قالو وہ کہتے ہیں، آمَنَّا آمن اور نہ دو ہیں، ایمان لائے ہم، وَإِذَا اور جب، خَلَا خلوت میں ہوتے ہیں، علیحدہ ہوتے ہیں، خلوت تو آپ سمجھتے ہیں اکیلے ہونے کو کہتے ہیں، بَعْدُهُمْ ان میں سے، بعض ان کے بعض، الہ طرف، بعد ان بعض کے، قالو وہ کہتے ہیں، ا کیا، تحدثونا اس کے بعد ہم کو کریں گے، تحدثونا سب سے پہلے تو تا شروع میں ہے، تو تم، حدث یحدث، تو یہ حدث اسی سے حدیث بھی بنتا ہے، کوئی ایسی بات جو پہلے معلوم نہ ہو، تو تم باتیں بتاتے ہو، ہم ان کو، بیما سات اس کے، جو فتح اللہ کھولا اللہ نے، علیکم تم پر، لیحاجوکم تاکہ حاجو حجت آپ سمجھتے ہیں حجت، تو یہ لفظ اس کے لیے آتا ہے کہ جب دلیل میں غالب آنے کی کوشش کرنے کے لیے کوئی جھگڑا کرتا ہے کہ میں غالب آ جاؤں، تو اس کے لیے یہ آتا ہے حجت، تاکہ وہ جھگڑا کریں، بہی سات اس کے، عند ربکم تمہارے رب کے پاس، عند پاس، ربی رب، کم تمہارے، ا کیا، ف پھر، لا نہیں، تعقلون تم عقل سے کام لیتے، اولا اوا کیا، لا نہیں، یعلمون وہ جانتے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، یعلم وہ جانتا ہے، ما جو، یسرون اسرار سے، سر کہتے ہیں راز کو، وہ چھپاتے ہیں، وما اور جو، یعلنون یہ اسی کا الٹ ہے، جو اعلان کرتے ہیں، عین لام نون بیچ میں آپ دیکھ رہے ہیں، جو ظاہر کرتے ہیں، ومنہم اور من سے، ہم ان میں سے، امیون امی ہیں، ان پڑھ ہیں، لا نہیں، یعلمون وہ جانتے، الکتاب کتاب کو، الا سوائے، امانی خواہشات کو بھی کہتے ہیں، جھوٹی امیدوں کو بھی کہتے ہیں، جھوٹی تمناؤں کو، خود ساختہ باتوں کو، وہ اور ان نہیں ہیں، کیونکہ آگے اللہ ہے، ہم وہ، اللہ مگر، یظنون وہ گمان کرتے ہیں، فویل ف تو ویل ہے، ہلاکت ہے، تباہی ہے، लिल्लदीना, लिए उन लोगों के, यक्तुबुना, यक्तुबुना कतबा से है, किताब भी इसी से होता है, किताबत भी इसी से होता है, असल में लिखने को कहते हैं, और किताब भी लिखी हुई चीज। यक्तुबुन वो लिखते हैं, अल किताब किताब को, ये खास किताब की बात है ना, तौरात की बात हो रही है, इसीलिए अल किताब है। बी ऐदीहिम, सात हाथों के, यद की जमा, हिम उनके। सुम्मा फिर यकूलूना वो कहते हैं, हादा ये, मिन इंदिल्ला, अल्लाह की तरफ से है, ली यश्तरू, ताकि वो लें, ताकि वो खरीदो फरोख्त के लिए आता है ना इश्तेरा, ताकि वो लें, बी बदले के लिए भी आता है, बदले ही इसके, समानन कीमत, कलीलन थोड़ी, फ बस वही हलाकत है, लहुम लिए उनके, मिम्मा मिन और माँ मिल गए, मिन से माँ जो, उससे जो, कतबत लिखा, आईदीहिम वही जो पहले आया है उनके हाथों ने, वह और वैलुन हलाकत है, लहुम लिए उनके, मिम्मा उससे जो, यकसिबुन कसब से वो कमाते हैं, वकालू और वो कहते हैं, लन हरगिज नहीं, ला से भी ज्यादा स्ट्रोंग है, तमस्सना मस करेगी, छुएगी ना हमको, अन्नार आग, इल्ला मगर, अय्याम, अय्याम तो आपको पता है यौम की जमा, दिन, मादूदा अदद से, अदद गिनती को कहते हैं, मादूदा गिनती के, कुल कह दीजिए, अ क्या, इत्तखज तुमने अखज किया, यानी तुमने रखा है या लिया है, इत्तखाज़ होता है ना पकड़ना या लेना, तुमने लिया या तुमने पकड़ा या तुमने रखा, इंद अल्लाह, अल्लाह के पास, अहदन कोई अहद, अब डिपेंड करता है अहद के लिए आप क्या यूज करते हैं, लेना या पकड़ना, फ तो लन हरगिज नहीं, युखलिफ अल्लाह, अल्लाह ताला खिलाफ करेगा, अहदा अहद हु उसके, यानी अपने, अम या तकुलून तुम कहते हो, अल्लाह अल्लाह पर, मा जो, ला नहीं, तालमून तुम जानते, बला बला इसको ऐसे ही याद कर लें, क्यों नहीं, जैसे हम कहते ना क्यों नहीं, ऐसे ऐसा ही है, क्यों नहीं, मन जिसने, कसबा कसब जैसे हम कहते कस्बे हलाल, हलाल की कमाई, तो कमाया, सही अतन बुराई को, व अहात और इहाता कर लिया, घेर लिया, बिही उसको, खती अतुहु उसकी खता ने, फ तो उलाई का यही लोग, अस्हाबुन्नार साथी हैं आग के, हम वो, फीहा इसमें, खालिदून हमेशा रहने वाले, वो लदीना आमनू और वो लोग जो ईमान लाए, व आमिलु सालिहात और उन्होंने नेक अमल किए, उलाई का अस्हाबुल जन्ना यही लोग, अस्हाबुल जन्ना जन्नत के साथी हैं, हम फीहा खालिदून वो इसमें हमेशा रहने वाले हैं, वह इद और जब, और जब मैंने आपको बताया था इज्क आएगा तो इसका मतलब कोई पिछली बात को याद कराया जा रहा है कि ऐसे हुआ था, अखद ना लिया हमने, अखद जैसे पहले आया है इत्तखदा, तो इसी तरह यहाँ पे उसी से अखद लिया ना हमने, मीसाक, मीसाक जैसे आप पहले पढ़ चुके हैं, मीसाक के मदीना भी आपने पढ़ा होगा, तो पक्का अहद, यानी जैसे आप कहते हैं कोई एग्रीमेंट साइन करते हैं आप ना, तो इस तरह मीसा के, बनी इसराइल, बनी इसराइल से, ला ताबुदूना ना तुम इबादत करोगे, इल्ला मगर अल्लाह की, वा और बिल वालिदैन साथ वालदेन के, एहसाना एहसान, वा और दिल कुर्बा दी वाले, अल कुर्बा करीब, करीब वाले माने क्या हुए, करीब वालों से माने रिश्तेदारों के, वल यतामा और यतीमों, वल मसाकीन और मिसकीनों, वकूलू और कहो, ये फेले अमर है, कुल का की जमा, जैसे कुल जब एक को कहते हैं तो कुल, जब बहुत सारे लोगों को कहना तो कूलू कहो, लिन्नास लोगों से, हुस्ना हुस्न मतलब खूबसूरत के लिए आता है ना, खूबसूरत बात, यानी वाकी मुसला और कायम करो नमाज, व आतु ज़का और अदा करो ज़कात, सुम्मा फिर तवल्लई तुम, वल्ला युवल्ली तवल्लई तुमसे मतलब है मुंह को मोड़ लेना। मुंह मोड़ लिया तुमने इल्ला मगर कलीलम बहुत कम, मिन कुम मिन से कुम तुम में से, वा और अंतुम तुम हो मुआरिदून एराज करने वाले। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक हमारे लफ्जी तर्जुमा हो गया। देखते हैं इसकी तफसीर। हमने पहले पढ़ा कि बनी इसराइल के दिल इतने सख्त हो गए। आप देखें कि एक बंदे को जिंदा होते देख के भी, अपने सामने भी अगर किसी को हिदायत ना मिले तो फिर आहिस्ता आहिस्ता दिल इसी तरह सख्त हो जाते हैं। जब इंसान मुसलसल हठधर्मी नाफरमानी पे लगा रहे तो फिर दिल ऐसे सख्त हो जाते हैं कि जैसे मुर्दा होता है। तो ये लोग भी ऐसे हो चुके थे कि इनके दिल इंतहाई सख्त हो गए थे, पत्थरों से भी ज्यादा सख्त। अब क्या था, मुसलमान जो लोग नए नए हुए जैसे मदीना में, जब औस और हजरत मुसलमान हुए तो वो लोग तो इनके साथ ही रहते थे। आपको पता है मदीना में ये कबाइल थे औस और हजरत, और यहूद के भी तीन कबाइल रहते थे। तो ये लोग उनसे सुनते रहते थे कि ये वो बताते रहते थे कि ऐसे ही आखिरी नबी आएगा। बल्कि ये लोग फलस्तीन से यहाँ पे मूव ही इसलिए हुए थे, यहूदी कबाइल ये यहाँ के नहीं थे, ये आके बाहर से यहाँ बसे थे क्योंकि ये कहते थे कि हमारे किताबों में है कि आखिरी नबी यहाँ आएगा। तो इतनी अच्छी तरीके से इनको सब पता था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। अब जब ये अंसारे मदीना जिनको आप कहते हैं, जब ये मुसलमान हुए तो इनको ज्यादा ये था कि ये लोग तो मुसलमान जरूर हो जाएंगे क्योंकि ये तो पहले से ही अहले किताब हैं, किताब वाले हैं, और इनकी तो किताबों में ये हमें खुद बताती हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लिखा हुआ था और आपका हुलिया मुबारक भी बयान किया गया था। और तो बहुत उनको ये उम्मीद थी कि ये तो जरूर ईमान लेंगे। ठीक है, मुशरिकी ने मक्का नहीं लाए क्योंकि वो तो पहले ही बुत परस्त हैं ना, उनके पास अरसाए दराज से कोई नबी आया, हजारों साल गुजर गए, और बुत परस्ती से निकलना ज्यादा मुश्किल है। जो लोग पहले ही मूसा अलैहि सलाम को जानते हैं, उनके पास किताब भी है और वो इतने किताब वाले इल्म वाले समझे जाते हैं, तो ये तो लाजमी तौर पे होगा कि ये ईमान ले आएंगे। अल्लाह अकबर। ईमान का इससे अक्सर ताल्लुक नहीं होता कि कौन कितना जानता है और कितना उसके अंदर कितनी उसके पास इल्म के खजाने हैं, बल्कि अक्सर इंसान के अपने अंदर से होता है कि उसका अपना अंदर क्या है। तो उसी के तनाजुर में ये देखते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अफतत्मऊना, ये मुसलमानों को कहा जा रहा है, क्या तुम फिर उम्मीद रखते हो अन युमिनू के वो ईमान लाएंगे। वो कौन? यहूदी उलमा और यहूदी लोग। लकुम तुम्हारे लिए, वक़द हालांकि तहकी काना फरीक मिनहुम, एक ग्रोह उनमें से, कौन ग्रोह यानी उलमा का ग्रोह जो अहले किताब में से, यस्माउना कलाम अल्लाह, वो सुनता है अल्लाह का कलाम, सुम्मा युहर्रिफूनहू मिन बादि मा अकलूहू, इसके बाद वो इसमें तहरीफ कर डालते हैं, इसके बाद के उन्होंने समझ लिया उसको, वहुम यालमून, और वो अच्छी तरह जानते हैं इसको। यानी क्या इन लोगों ने सुन लिया हुआ था? यस्माउना कलाम अल्लाह से मुराद दो चीजें हैं, या तो ये कि वो क्या, ये मुराद है कि जो उनके सरदार गए थे मूसा अलैहि सलाम के साथ तूर पर और वहां पे अल्लाह ताला का कलाम उन्होंने सुना था तो आके वापस कह दिया, नहीं वो तो कहा गया है कि बेशक तुम मानो या ना मानो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ऐसे यानी उसमें तहरीफ कर दी, खुद से उसको बदल डाला। या फिर जो तौरात है उसके को कहा गया कलामुल्लाह के, उसके अंदर तहरीफ कर दी, और तहरीफ कैसे करते थे कि चीज़ें कोई ऐड कर दी, कोई निकाल दी, कोई खुदी उसके कोई माने बदल दिए, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोई माने बयान करने शुरू कर दिए, इस तरह से करके वो अल्लाह ताला के कलाम के अंदर तहरीफ करते थे, चेंजेस करते थे और उसको बदल डालते थे। तो कहा गया कि तुम इनसे तवक्को रखते हो, इनका तो ये हाल है कि इन्होंने तो अपनी किताब तक को बदल दिया है जिसके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानी मौजूद थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वाजे तौर पे आयात मौजूद थी, इन्होंने तो उसको बदल दिया। इनसे क्या खैर की तवक्को है जो अल्लाह ताला के कलाम के अंदर इतनी बड़ी चेंज लाने की भी जुर्रत कर सकते हैं, उनसे आप क्या तवक्को करोगे कि ये ईमान ले आएंगे? क्योंकि जब उन्होंने देख लिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमारे में से नहीं आए और ये तो बनी इस्माइल में से आ गए, और ये कैसे हो गया? तकब्बुर उनके अंदर इतना था, हठधर्मी इतनी थी, जिद इतनी थी, ये कैसे हो गया ये इनके अंदर से आ जाए? तो ये चीज़ ने उनको इस चीज़ पे आमादा किया कि उन्होंने आयतें ही बदल दी और इस चीज़ को तरोड़ मरोड़ के अपने लोगों को बताया कि ऐसा तो कुछ नहीं है, हालांकि उनके पास वाजे आयात मौजूद थी। ऐसे ही है, मिसाल के तौर पे आप समझ लें, एक बंदे को हमेशा उसकी वाह-वाह होती है, उसको इनाम दिया जाता है, उसको कोई पोजीशन दी जाती है, कोई पावरफुल पोजीशन दी जाती है, और एक दफ़ा उसको ना दी जाए तो वो बिगड़ जाता है कि हैं हर दफ़ा तो हर साल तो मुझे ही इनाम मिलता है और अब किसी और को दे दिया गया, मेरी जगह किसी और ने ले ली। तो यानी जब अल्लाह ताला की खातिर नहीं होता और जब अपनी चौधराहटें ज़्यादा अजीज होती हैं और दीन कारोबार बन जाता है ना, तो फिर ये होता है कि अच्छा फिर हमारा क्या बनेगा, और ये तो रसूल यहाँ पे आ गए, अब हमारी किधर चौधराहट जाएगी, हम किधर के रैबाइज रह जाएंगे। तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो आयात थी उनको ही बदल डाला। और तहरीफ दो तरह से होती है, चेंजिंग ये एक लफ्जी होती है और एक मानवी होती है, यानी एक तो होता है कि अल्फाज को ही चेंज कर देना, इन्होंने दोनों की थी, और एक है माने को चेंज कर देना। आज के दौर में आप देखें कुरान करीम में कोई अल्फाज को तो चेंज नहीं कर सकता, लेकिन मन माने माने बनाना और उनको कुरान से ही अपनी बिदात को प्रूव करना, ये आज भी है कि ऐसे लोग हैं जिनके अंदर इतनी जुर्रत है कि वो बिदतों को कुरान से ही कहते हैं कि ये देखो, और अपने मुशरिकाना अकायद को कुरान से साबित करने की कोशिश करते हैं। जो भी कोई कर रहा है, जितने फिरके बने हुए हैं आजकल, जो गुमराहकुन फिरके हैं, वो सारे अपनी दलाइल कुरान से ही देते हैं। इसी वजह से हम ये कहते हैं कि सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ कुरान काफ़ी है, बल्कि कुरान के साथ हदीस के ऊपर ईमान रखना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि हदीस ही कुरान की वजाहत करती है। अब कोई इंसान कोई खुद खड़ा होके कहना शुरू कर दे कि मैं कुरान की ये तफसीर करती हूँ और मुझे बड़ा इल्म है और देख के आयत को और तफसीरें शुरू कर दे, तो ये नहीं है जो उसकी तफसीर सही है, बल्कि असल बात यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको कैसे समझाया। और फिर यहाँ पे भी नहीं बात रुकती, सिर्फ यहाँ तक नहीं है, इससे आगे भी है, सहाबा ने उसको कैसे समझा और उसके ऊपर अमल किया। यहाँ तक जाके हम देखते हैं कि कुरान पाक में किस आयत का क्या मतलब बनता है, वरना तो इस तरह हर कोई अपनी कोई डिक्शनरी खोल के बैठ जाए और उससे करना शुरू कर दे, सलात का माना दुआ है, और फिर उसके बाद ये भी तहरीफ की गई, जैसे इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम, सूरह कहफ के एंड में आता है, बेशक आपको अब तो पता है इन्नमा का माना क्या है, कलमा हसर है कि मैं और कुछ नहीं हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ क्या हूँ, एक बशर हूँ तुम्हारी तरह। तो उसको कर दिया इन्ना बेशक, माँ अलग तोड़ के माँ को अलग कर दिया, नहीं माँ का माना नहीं का भी होता है। अब इन्नमा तो एक लफ्ज है, लेकिन जब इन्ना अलग कर दिया और माँ अलग कर दिया, और इन्ना बेशक माँ नहीं, मैं बशर तुम्हारी तरह, मैं तुम्हारी तरह बशर नहीं हूं, बिल्कुल उलट माना कर दिया। तो ये है मानवी तहरीफ करना, कि अपनी अकीदों को प्रूव करने के लिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नूर हैं और वो तो बशर हैं ही नहीं, लो जी कुरान से ही हमने आयात निकालनी। तो इस तरह से करके जो तहरीफात की जाती हैं, या कहना देखो कुरान में ला तकरबु सलात, तो आगे भी तो देखो वानतुम सुकारा, तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जब 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 बात करनी हो ना, तो फिर कोई कुछ भी निकाल सकता है। देखो कुरान के अंदर लिखा हुआ है कि कत्ल करो इन मुशरिकों को, कत्ल करो इन काफिरों को, तो देखो चलो अब हम कत्ल करने चल पड़ते हैं। तो ये ऐसे नहीं है,
नॉट दैट सिंपल। आपको देखना होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी क्या तफसीर बताई, सहाबा ने कैसे इसको समझा और कैसे इसके ऊपर अमल किया। यहाँ तक हमारे लिए हुज्जत है ना, इसके बाद कोई हुज्जत है कि कोई खड़ा होकर कहे कि इस आयत का ये मतलब हम बताते हैं, वो दुरुस्त नहीं है। जब तक कि हम सोर्स की तरफ ना जाएं, आज नए से नए लोगों ने अपने अपने तरीके बना लिए हैं और डिफरेंट चीज़ों को वैसे बयान करना शुरू कर देते हैं, और हम भी जब हमें पता ही नहीं तो हमें समझ नहीं आती कि इसने तहरीफ की। वे देखें, तहरीफ की समझ उसको आएगी जिसने कुरान को पढ़ा है, सीखा है, समझा है। जब समझा नहीं होता ना, फिर कोई आपको जिस तरफ जाता है उधर हांक ले जाता है। जैसे आप किसी रास्ते को जानते हैं तो आप कोई और कहीं किसी और तरफ आपको लेकर निकल रहा है तो आपको पता है ये रास्ते पे सही रास्ते पे नहीं जा रहा, ये मुझे कहीं और लेके जा रहा है। और अगर आपको पता ही नहीं होगा तो आप बैठे रहेंगे कि ठीक है, जिधर भी जा रहा होगा उधर ही होगा। तो इसीलिए इल्म लेना इतना ज़रूरी है। और वो जानते थे, बात ये कि जानते बूझते ये काम करना कितना बड़ा गुनाह है, कि उनको पता है कि हम गलत कर रहे हैं लेकिन फिर भी उन्होंने इसको ऐसे किया। अल्लाह अकबर। तो इसलिए ये पहले इनके अंदर ये बुराई आई और मुसलमानों ने इसके अंदर आज के दौर के अंदर इसी तरह अपनी किताब में मानवी तहरीफ करनी शुरू कर दी। तो हमें चाहिए कि हम इल्म लें ताकि हमें पता हो। आपको पता है जहाँ पे जहालत होती है वहीं पे फिर ये लोग डाका भी मारते हैं, और फिर वहीं पे कई मुसलमान जिनको कोई इल्म ही नहीं है, जिनको कोई पता नहीं है अपने दीन का, वो उनकी बातों में आ जाते हैं और कोई क्रिश्चियन बन रहा है और कोई कुछ बन रहा है। अल्लाह अकबर। अब ये लोग उस जमाने के, अपने जमाने के, मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने के ये लोग मुसलमान थे, ये अहले किताब ये मुसलमान थे, लेकिन फिर भी इन्होंने ये हरकतें की। तो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में थे मदीना में, वो इन इन सब चीजों को सही समझते थे, और वो भी इस तरह की मानवी और जो है ऐसी तहरीफें करते थे। وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا, और जब वो मिलते हैं ईमान वालों से, قَالُوا آمَنَّا, तो वो कहते हैं हम ईमान ले आए। यानी जब ईमान वालों के साथ मिलते हैं ये यहूदी लोग, तो वो कहते हैं तुम हमें भी तो ईमान वाला मानो ना, हम भी तो ये चीज़ों को मानते हैं, अल्लाह ताला को मानते हैं, आखरत को मानते हैं, हम भी यानी फरिश्तों को मानते हैं, रसूलों को मानते हैं, अगर दो रसूलों को नहीं माना तो क्या बाकी सबको तो मानते हैं ना, तो हमें भी ईमान वाला समझो, मानो हमें। और ये भी एक रिवायत आती है कि जो इनमें से कुछ बड़े लोग थे वो जाके सुबह को ईमान ले आते थे और कहते थे हम ईमान वाले हैं, और उसके बाद शाम को बिल्कुल उससे पलट जाते थे ताकि लोग ये सोचें कि पता नहीं क्या बात होगी, ये इतने बड़े किताब वाले लोग, इतने इल्म वाले लोग ये पलट गए हैं, तो शायद ये दीन सही नहीं है, कुछ तो इसमें वजह होगी जो ये लोग पलटे। तो ये भी उनकी एक तरीका था लोगों को हटाने का। तो ये यहूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मूसा अलैहि सलाम की जब बातें सुनते तो मुसलमानों से कहते थे ये तो हमारा पहले से ही ईमान है, हम तो इसी तरह तो हम भी समझते हैं, हम भी यही कहते हैं। फिर जब ये अपने उलमा के पास जाते, ये जो आम यहूदी होते, वो कहते हमारी भी किताबों में ऐसे ही लिखा हुआ है, बिल्कुल यही है। व इज़ा खला बादुहुम इला बाद, और जब ये अलहदा होते बाज उनके बाज की तरफ, कालू, कौन कहते, जो इनके उलमा होते वो इनको डांटते थे फिर, अ तो हदीसूना हम बीमा फतह अल्लाह अलैकुम, क्या तुम उनको वो बातें बताते जो अल्लाह ताला ने तुम्हें तुम्हारे ऊपर खोली हैं। यानी कौन सी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खबरें और कई तालीमात जो मुसलमानों की और उनकी बिल्कुल सेम थी, तो अब उनकी किताब में भी वो थी, तुम उनको क्यों वो बातें बताते हो जो कि तुम्हारे ऊपर अल्लाह ने खोली, यानी तुम्हारी किताब में। तुम क्यों निशानियां, प्यारे नबी की निशानियां जो आखिरी नबी की हैं, वो उनको जाके क्यों बताते हो कि हमारी किताबों में भी ऐसे लिखा हुआ। लियो हाजुकुम बिहिंद रब्बिकुम, ताकि वो जाके झगड़ा करें अल्लाह ताला के पास तुम्हारे साथ, यानी कयामत के दिन वो अल्लाह ताला के पास जाएंगे जब, तो कहेंगे, ये मैंने आपको बताया ना, हाजुकुम क्या, हुज्जत तमाम करने के लिए वो वहां पे करें कहेंगे कि अल्लाह इनको तो पता था, इन्होंने हमें बताया था कि हमारी किताब में भी है, फिर भी ये नहीं माने। तुम सोचते नहीं हो, तुम अपने आप को ट्रबल में डाल रहे हो कि तो ये कयामत के दिन देखना तुम्हारे साथ ही झगड़ा करेंगे, ये वहां पे अल्लाह ताला को बताएंगे तुम्हारी ही शिकायतें, तो इनको मत बताओ कि हमारी किताब में ये लिखा हुआ है। यानी कैसी बातें, क्या ये सोचते हैं कि अल्लाह ताला को नहीं पता कि इनके दिलों में क्या है? अफला तकिलून, तो वो एक दूसरे को कहते थे तुम्हें अक्ल नहीं है, क्यों जाके तुम मुसलमानों को ये हकीकतें बताते हो, तुम्हारे खिलाफ ही कयामत के अंदर इस्तेमाल करेंगी। तो यानी उनको पटियां पढ़ाते थे इस तरह कि तुमने उनके सामने कुछ नहीं बताना, और वो कभी कह देते थे इस तरह, या तो कभी अपने नंबर बनाने के लिए मुसलमानों के आगे कह देते थे कि हम भी वाकई हम भी यही मानते हैं, या फिर इतनी अकल नहीं थी तो कह देते थे कि हम भी ये मानते हैं, वाकई हमारे पास भी यही लिखा हुआ है, और जन्नत जहन्नम कयामत और ईमान लाने के बारे में और ये सब चीज़ें और पिछले अंबिया के बारे में ये सारी ही हमारी किताबों में। तो वो कहते थे मत बताओ मत बताओ, वरना वो ये जाके अल्लाह ताला को कहेंगे इनको पता था फिर भी ये नहीं माने। तो यानी देखें, मान वो सकता है जिसको ये हो कि मैंने हक को सामने आ जाए तो उसको अपना लेना, लेकिन वो शख्स जिसने पहले ही फैसला कर लिया हो कि मैंने नहीं मान के देना चाहे जो भी हो जाए, उसको आप दिन के वक्त सूरज के सामने भी खड़ा कर देंगे और कहेंगे दिन है, तो वो कहेगा नहीं मैं तो नहीं मानता, ये तो रात है, आप उसको मनवा नहीं सकते ना जिसने फैसला कर लिया हो। अवला यालमूना, क्या इनको नहीं पता अन्नल्लाह यालमु मा युसिरून व मा युलिनून, कि अल्लाह ताला को तो पता है ना जो ये छुपाते हैं और जो जाहिर करते हैं। ठीक है, तुम मुसलमानों से छुपा सकते हो ये बात कि मुसलमानों को तो बताओ ही ना कि हमारी किताबों में क्या लिखा, लेकिन अल्लाह ताला से कैसे छुपा सकते, उसको तो पता है ना जो छुपाते हो तुम और जो जाहिर करते हो, और जो तुम इस वक्त एक दूसरे से ये बातें कर रहे हो कि अल्लाह ताला को नहीं पता। अब आप देखें कि सुबहान अल्लाह, किसी ने एक दफा कहा कि जब कुरान की तरफ बुलाया गया तो उसने कहा मैं तो इसलिए नहीं पढ़ती क्योंकि अमल तो हमने करना नहीं है, तो फिर अगर हमने पढ़ लिया तो फिर कयामत के दिन अल्लाह ताला हमसे पूछेगा कि भाई तुमने अमल क्यों नहीं किया, तो इसलिए हम पढ़ते ही नहीं हैं ताकि अमल करना ही ना पड़े, और हम उस दिन कह देंगे कि हमें तो पता ही नहीं था। तो क्या ये सोचते हैं अल्लाह ताला नहीं सुन रहा इस वक्त, यानी ये सोचते हैं अल्लाह ताला को नहीं पता इनकी गुफ्तगू का कि ये क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनके दिलों के हाल नहीं जानता कि ये क्यों नहीं पढ़ना चाहते कि अमल ना करना पड़े, वो तो अमल नहीं करेंगे तो क्या कयामत के दिन कह देंगे जाके हमें तो पता ही नहीं था, तो क्या इनका ये एक्सक्यूज माना जाएगा? कोई आपसे लाइसेंस ले ले, रोड टेस्ट दे के लाइसेंस ले लेता है और उसके बाद कहे ओहो मुझे तो पता ही नहीं था रेड लाइट तोड़नी है ये तो एक जुर्म है, ये तो मुझे पता ही नहीं था, मुझे किसी ने बताया ही नहीं क्योंकि जानना ही नहीं चाहते थे। तो ठीक है, लोगों को तो शायद बेवकूफ़ बना सकते हो ये कह के कि हमें तो पता ही नहीं था, लेकिन आप सोचते हो अल्लाह ताला नहीं सुन रहा तुम्हारी ये बात, जिस वक्त तुम अपने मुंह से बोल रहे हो कि हम इसीलिए नहीं पढ़ते कि हमें अमल ना करना पड़े, तो अल्लाह ताला को ट्रिक करना चाहते हो, अल्लाह ताला को चाहते हो कि जैसे लोगों को मैं इस तरह बहाने करके उनको बहला फुसला के उनको बस अपनी उसमें कायल कर लेती हूँ, जैसे लोगों को हम बेवकूफ़ बना लेते हैं जिसको हम कहते हैं, तो हम अल्लाह ताला के सामने बातें करके और उसके सामने भी अपना रोना रो लेंगे कि हमें तो पता ही नहीं था या अल्लाह हम क्या करते, तो हमारा सुन लिया जाएगा, और वो इस वक्त नहीं देख रहा कि तुम क्या कह रहे हो। बिल्कुल इसी तरह वो वहां पे एक दूसरे से बातें करें, क्या वो ये नहीं देख रहे अल्लाह ताला को तो पता है ना ये तुम्हारी किताबों में क्या लिखा हुआ है और तुम्हें पता भी है। देखिए बार बार ये बात आती है ना कि वो उनको पता था, असल में पता हो के फिर उसके बाद इंसान जानबूझ के ये कर रहा है, तो फिर क्या, जबकि सबको पता है कि कुरान करीम अल्लाह ताला का कलाम है, हर मुसलमान को पता है, फिर वो इससे बच बच के निकले और उसको कोई अहमियत ना दे और इसको ना सीखने की तरफ आए कि अच्छा सीखेंगे तो अमल करना पड़ेगा, तो वो सोचते हैं कि अल्लाह ताला उनके ये एक्सक्यूजेस को सुन लेगा और उस दिन जाके बताएंगे तो उसको पहले पता ही नहीं होगा कि इन्होंने किस वजह से नहीं सीखा। तो वो कहते हैं आफल आता खिलू, तुम्हें अक्ल नहीं है क्यों ये काम करते हो? तो अल्लाह ताला ने बता दिया कि अल्लाह ताला तुम्हारी छुपी खुली सारी बातें जानता है, और वो ये भी जानता है कि तुम इस वक्त बैठे क्या बात कर रहे हो। अल्लाह अकबर। अगर वो समझते हैं वो दुनिया में इस तरह तहरीफात करते रहेंगे, हक को छुपाते रहेंगे, मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे, नहीं, हमारे तो नहीं ये लिखा हुआ, हमारी किताब में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो अल्लाह ताला को भी समझ नहीं आएगी क्या? नाउज़ुबिल्ला। अल्लाह अकबर। इनका असल में हाल क्या है? व मिनहुम, और इनमें से, उम्मीयून, उम्मी हैं लोग, अनपढ़ हैं, उम्मी अनपढ़, जो माँ के पेट से बस पढ़ा हो उसको कहते हैं उम्मी, उम्मी हैं। ला यालमून अल किताब, वो नहीं इल्म रखते किताब का, इल्ला मगर, सिवाय किस चीज के, अमानी, अमानी का, मनयून से है, जिसको कोई तसव्वुर कायम कर लेना उसी से अमानी है, कि ऐसे ही अपने जहन में को खुद साख्ता, खुद ही से कोई तसव्वुर बना लेना कि ये ऐसे होगा, ये यकीनन ये होगा, ऐसे होगा। ये अब आम आवाम की बात हो रही है, पहले किसकी थी? ये वो जो उनकी ट्रिक्स बताई गई, वो कि हम ऐसे कह दें और तुमने ऐसे नहीं कहना, और तुमने, हालांकि इनको, उनको पता था, ये उनके उलमा की बातें, उलमा को पता ही था, तभी तो हजरत सलमान फारसी को आप देखें किसने बताया था, वो भी एक आलिम थे जो फौत हो रहे थे, और जब इन्होंने पूछा कि अब मैं किसके पास जाऊं, तो उन्होंने कहा वहां पे जाओ, वो खजूरों की जगह है जहां पे काले पत्थर हैं और खजूरें हैं, तो काली चट्टानों का पता किया कि कौन सी जगह है जहां पे काली चट्टानें हैं और खजूर के दरख्त हैं, तो पता चला यसरब है, तो फिर वो मदीना आ गए ताकि यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार करें, और जब आप आए तो आप पर ईमान लेकर आए। तो देखें ये इतना साफ और वाजे था। यहां से हमें ये पता चला कि ये लोग जो भी कर रहे थे ना, ये ऐसे नहीं था बेचारों को पता नहीं था उनको, वो क्या जानते होंगे, नहीं, बल्कि ये वो लोग थे जो हक को पहचानते थे फिर भी उसको चेंज करते थे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी हिर्स थी ना कि ये लोग ईमान ले आए, कि बार बार इनको बताते थे बार बार कि शायद किसी तरह ये मान जाए, शायद किसी तरह ये मान जाए। तो अभी इसमें देखें, ये इन आयात में मुसलमानों को भी तसल्ली दे दी गई और इन लोगों की हकीकत बता दी गई कि ये लोग बिहाइंड द डोर्स क्या बातें करते हैं, और तुम इनसे आप तमाम मत रखो, तुम ना उम्मीद रखो इनसे। एक तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसे कि हर एक को यानी कोशिश होती थी कि हर एक को पैगाम पहुंच जाए और हर एक जहन्नुम से बच जाए, आपको वो हदीस पता होगी कि एक बच्चा था, लड़का था, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत किया करता था, यहूदी था, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खादिम था, तो जब कुछ दिन वो नहीं आया तो आपने उसके बारे में पूछा, तो पता चला वो बीमार है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी इयादत करने के लिए गए, तो वो बिस्तर पे पड़ा हुआ था और आखिरी दमों पे था, तो आपने फरमाया कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, लड़के ने बाप की तरफ देखा, बाप को नजर आ रहा था कि बच्चे का अब आखिरी वक्त है, तो उसने कहा अबुल कासिम की बात मान लो, तो बच्चे ने कलमा पढ़ लिया। अब बाप खुद नहीं माना मगर बच्चे को कहा, इसलिए क्योंकि खुद की तो अपनी बहुत सारे अपने लालच और बहुत सारी अपनी दुनिया की चीजें, मफाद था जो छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन अब बच्चा दुनिया से जा रहा है, आपने उसको कहा तुम पढ़ लो, इतना ज्यादा इनको पता था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बाहर आए तो आप इतने खुश थे कि अल्लाह ताला ने इसको आग से बचा लिया मेरी वजह से, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हर एक के लिए हरीस होते थे, और ये जानते बूझते फिर यही करते थे। और यहाँ से ये भी हमें पता चला ना कि कलाम अल्लाह यहाँ पे कहा गया, कुरान पाक को भी कलाम अल्लाह कहा गया और यहाँ पे तौरात को भी कलाम अल्लाह कहा गया, लेकिन हमें ये यहाँ से वाजे हो गया कि अल्लाह के कलाम में इन्होंने चेंजेस की हैं और जानबूझ के की हैं। ठीक है, अब आम आवाम का क्या हाल है? इनमें उम्मी है, आम आवाम अक्सर ऐसा ही होता है कि ये भेड़ बकरियों की तरह ही होते हैं, जिधर इनको ले जाओ उधर चल पड़ते हैं। अब आम आवाम का हाल क्या था? इनको किताब का कुछ नहीं पता, बस पढ़ना जानते हैं, इनके तिलावत कर ली, इसके अलावा उनको कुछ नहीं समझ के किताब में क्या है। सिवाय तिलावत के। वइन हुम इल्ला यज़ुन्नून, ये सिर्फ गुमान ही है इनके, ख्वाहिशात और गुमान। यानी ख्वाहिशात क्या, जिधर को इनके उलमा ने इनको लगा दिया ना कि बस आप यहूदी हो तो आप जन्नत में जाओगे, आपको तो अल्लाह ताला के लाडले हो, आपको तो कभी कोई आग छुएगी नहीं, आगे आएगा कि आग छुएगी भी तो बहुत थोड़े दिन। विशफुल थिंकिंग एक, यानी कोई नॉलेज नहीं है इनके पास अल्लाह ताला की किताब का। आम अवाम का ये हाल है, अगर कुछ पढ़ा भी है उसके अंदर से तो पता ही नहीं है कि क्या पढ़ा है, इसका क्या मतलब है। ला यालमूनल किताब, अल्लाह अकबर। और विशफुल थिंकिंग ऐसी है, ख्वाहिशात ऐसी हैं, और खुद ही खुद साख्ता अपने ही एक जहन के अंदर बनाया हुआ है कि हम जन्नत में पहुंच जाएंगे और हम तो बच जाएंगे और हम तो बड़े महबूब हैं और ऐसी बातें। ये सस्ते नुस्खे इनके उलमा इनको बेचते थे, क्योंकि इससे अमल तो बदलना नहीं होता था। या जैसे आपको पता है कि इन्होंने रजम की आयात को भी निकाल दिया था उसके अंदर से, कि जिना जानी जो शादीशुदा जानी है उसको रजम कर दिया, जब वो निकाल दिया था। तो यहूदी आलिम इनको ये चीज़ें सिखाते थे कि ये ऐसे ऐसे, और ये आंखें बंद करके उसको कबूल कर लेते थे और उनके ऊपर नजरानों की बारिश करते थे, वे इधर से नजराने आ रहे हैं, उधर से नजराने आ रहे हैं, और वो भी खुश वो भी खुश, उनको भी सस्ता नुस्खा मिल गया, इस तरह ही जन्नत में चले जाना, तो फिर क्या मसला है, कुछ अमल करने की फिर क्या जरूरत है। और सजाओं से भी बचा लेते थे उनको कि हाँ हाँ नहीं नहीं इसको देखो इस तरह से। लेकिन जब तहरीफ करनी हो ना, जैसे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीज सी चीज को बयान कर देना, ये बड़ा ही पॉसिबल हो जाता है। जैसे आप कहें बैठो मत उठो, अब मैं आपको कहूँ ना बैठो मत उठो, अगर मैं इसको ऐसे कहूँ, अब इसमें क्या मैंने कहा है कि बैठ जाएं उठे नहीं, राइट? लेकिन अगर मैं इसको ऐसे कहूँ बैठो मत उठो, तो अब क्या माना हो जाएगा? बिल्कुल उलट, बैठो मत अब है कि उठ जाओ, तुम बैठो नहीं। तो इस तरह की आप मिसालों से समझें कि इस तरह से ये तहरीफात करते थे और उनको फिर बता देते थे, वो आगे से खुश हो जाते थे, उनको अपना मकसद मिल गया, उनको दुनिया मिल गई अपनी, यानी पैसा मिल गया, बड़ी इज्जतें मिल गई, बड़े मशहूर हो गए। मशहूर लोग उन्हीं के पास ज्यादा जाते हैं ना जो उनकी मर्जी के, उनके मतलब के फतवे दे दें। तो ये भी आंखें बंद के करके कबूल कर लेते थे। आज भी देखिए ना, ऐसे अनपढ़ों का, ऐसे उम्मी लोगों का हजूम है उम्मत मुस्लिमा में, जिनको दुनिया के उलूम पे तो बड़ी दस्तरस हासिल है, जिनको दुनिया के उलूम में तो बड़ी डिग्रियां हैं, लेकिन उनको कुछ पता नहीं है कि उनकी किताब में क्या लिखा है। अब उनके सामने अल्लाह के कलाम को कोई कैसे करके बयान करे, कोई चर्ब जुबान है, कोई बड़ा तेज है जुबान का, ऑडियंस को ग्रैस्प कर लेता उनकी अटेंशन, बस जी ये वाह 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 क्या तकरीर उसने की है। अब वो जिससे हमारे दिल खुश हो जाए, बस तकरीरों पे वाह वाह, बस लेक्चर्स के ऊपर वाह वाह, और उठे और कपड़ा झाड़ के फिर उसके बाद कुछ भी नहीं पता। उसने भी इनको खुश कर दिया कि कोई फिक्र ही ना करो तुम सारे ठीक हो, और ये भी यही चाहते थे सुनना, जो कोई हक बोले उसकी बात नहीं सुनना चाहते थे। तो इन उनका भी यही हाल था, आज भी यही हाल है। जब क्या अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, कौन सी जमीन मुझे अपने ऊपर रहने देगी और कौन सा आसमान मुझे पनाह देगा अगर मैं कुरान की किसी आयत के बारे में अपनी समझ से या अपनी राय से कोई तफसीर बयान कर दूं, मेरी क्या जुर्रत है? अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमा रहे, मेरी क्या जुर्रत है? और वो लोग अपनी किताबों से ही, तौरात से ही लोगों को ऐसे ऐसे फतवे देते थे, ऐसे ऐसी बातें कहते थे कि बस वो लोग खुश हो जाते थे। अल्लाह ताला ने इसका ये मतलब किया, इसका ये मतलब किया। अब लोगों को जब कुछ पता ही नहीं है, वो उम्मी है, तो फिर जाहिर है अब वो भी उन्हीं बातों को लेके, और उन्होंने अपने जहन में बना लिया हुआ था कि हमने तो अब जन्नत में जाना ही है। तो हम इसी आईने में अपने आप को देखें कि कुरान जिंदगी की किताब है, इसको बगैर जाने हम जिंदगी गुजार रहे हैं, और हमें कोई भी कह देता है ना जी, खास तौर पे मैं देखती हूँ जब कोई फौत होता है तो फिर कितने लोग होते, अच्छा ऐसे कर लो, वैसे कर लो, वो कर लो, लोग उसके पीछे चल पड़ते जो जिसने कह दिया। जाहिर है जब इल्म ही नहीं है तो सुनी सुनाई बातों पे ही चलेंगे ना, तो सुपरस्टिशियस बातें, रस्मों रिवाज की बातें, कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है 2.5 पारे पढ़ लो तो ये राहदारी के हो जाएंगे, कोई कह रहा है सूरह मुल्क पढ़ के पीछे भेज दो, कोई कहता है कब्रों पे जाके आप उसके ऊपर बैठ के आप कुरान पाक पढ़ते रहो वहां पे, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो हम बस हर एक का सुन के और बस चल पड़ते हैं क्योंकि हमें कोई इल्म नहीं है, बस विशफुल थिंकिंग है, बस हम उम्मत मोहम्मद से हैं, अब हमारा क्या बिगड़ सकता है। वो भी उम्मीद थे, अल्फाज को तो समझते थे, अल्फाज को आता था उनको पढ़ना, लेकिन विदाउट अंडरस्टैंडिंग। तो मुसलमान को यहां से पता चलता है कि नहीं, विदाउट अंडरस्टैंडिंग नहीं, कुरान को समझना है, क्योंकि समझेंगे तो अमल कर सकते हैं। दुनिया के अलूम के ऊपर हम कितने साल जिंदगी लगा देते हैं ताकि इसके अंदर हम एक्सपर्ट हो जाएं, अगर उसका 1% टाइम भी हम कुरान को दे दें तो इसकी समझ आ जाए, वो जिसने आखरत में काम आ जाना है। अल्लाह अकबर, दावे तो हमारे सबके बहुत है, हमें अल्लाह ताला से बड़ी मोहब्बत है, रसूल से बड़ी मोहब्बत है, मगर अल्लाह ताला के कलाम को सीखना समझना वो हमारी लिस्ट में ही नहीं है प्रायोरिटीज की, इसके बारे में कोई इल्म नहीं है, इसीलिए फिर बिदात में पड़े हुए, इसीलिए शिरकिया काम हो रहे हैं हमारे अंदर, इसलिए बदअमलियां हैं। तो इल्म होना बहुत जरूरी है। सोचें आप किसी ऐसे बंदे के पास चले जाएं जो डॉक्टर है नहीं, और आप अपनी बीमारी बता के और कहें कि मुझे कोई नुस्खा दे दो, वो क्या कहेगा आपको, वो तो आपको किसी और तरफ ही लगा देगा। तो अगर हम सही होना चाहते हैं तो हमें कुरान की तरफ आना है, ये नहीं कि सुनी सुनाई बातें, नीम हकीमों की बातें सुन के और बस उस पर उस तरफ चल पड़े। तो ये समझे कि हमारे असलाफ क्या करते थे, वो लोग इस चीज को समझते थे कि हमने कुराने करीम को समझ के पढ़ना है और सीखना है इसको, इसी वजह से वो इसके ऊपर वक्त लगाते थे। और हमें पता चलता है हजरत हसन बसरी फरमाते हैं, कुरान इसलिए नाजिल किया गया कि इसको समझ के पढ़ा जाए और अमल किया जाए, लोगों ने इसकी तिलावत को ही अमल बना लिया, लोगों ने समझा कि यही अमल है कि हम तिलावत कर रहे हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने सूरह बकरा 12 साल में मुकम्मल की थी, क्यों? उनके पास तो बहुत अच्छे हाफजे थे, क्यों 12 साल लगे? इसलिए कि वो पढ़ते थे, समझते थे, फिर उसको अमल में लेकर आते थे, और जब मुकम्मल की थी तो एक ऊंट जिबा किया था, नहार किया था। इब्ने कय्यम ने कुरान को छोड़ने की जहां पे अकसाम बताई हैं वहां पे एक ये भी है कि कुरान को समझ के ना पढ़ना और ना गौर व फिक्र करना। अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं, हम लोग 10 आयात सीखते थे, फिर आगे उस वक्त तक नहीं बढ़ते थे जब तक इन 10 का माना ना समझ लें और उन पर अमल ना कर लें। तो तब माना समझते थे, अमल करते थे, तब आगे जाते थे। इसीलिए 3 रात से कम में कुरान पढ़ने की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत नहीं दी, क्योंकि इससे कम पढ़ेंगे तो समझे बगैर पढ़ेंगे, और समझना इतना ज्यादा जरूरी है क्योंकि समझ आएगी तो पता चलेगा कि ये क्या कहता है, और अगर समझ ही नहीं है, अल्लाह अकबर, तो फिर यही हाल होगा कि जैसे हम रमजान में 4 4 दफा 3 3 दफा कुरान पाक खत्म कर लेते हैं और एंड में कोई पूछे हमसे आपने क्या पाया क्या सीखा, ब्लैंक है, कुछ भी नहीं सीखा, क्या पाया इसमें से कुछ भी नहीं। अल्लाह अकबर। मोहम्मद बिन काब फरमाते हैं कि मैं रात से लेके सुबह तक सिर्फ 2 सूरतें जिलजाल और अलकारिया गौर व फिक्र से पढ़ता रहूं, ये मेरे लिए इससे बेहतर है कि मैं पूरा कुरान बगैर गौर व फिक्र के जल्दी जल्दी पढ़ लूं।
इसी तरह इब्ने कय्यम फरमाते हैं कि इंसान के लिए दुनिया और आखिरत में सबसे फायदा मंद चीज़ और इसकी निजात का सबसे आसान रास्ता ये है कि कुरान में गौर व फिक्र करे, इसके आयात के मानी समझे, उसके ऊपर जहन लगाए, तवज्जो करे। ये आला दर्जे की इबादत है। और देख लें, जैसे मैंने आपको बताया, मोहम्मद बिन काब ने क्या फरमाया, दो सूरतें भी मैं पढ़ लूँ ना और इनके ऊपर गौर व फिक्र करता रहूँ, ये बेहतर है। क्योंकि जब गौर व फिक्र करेंगे उनके ऊपर तो कुछ हासिल होगा, कुछ चेंज आएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया अफला या तदब्बरुल कुरान, तुम कुरान के ऊपर तदब्बर नहीं करते, गौर व फिक्र नहीं करते। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी पूरी रात एक एक आयत को दोहराते रहते थे, जिनमें आखरत का कोई जिक्र होता वो आपको रुला देती थी। बाहर सूरतों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्होंने मुझे बूढ़ा कर दिया, तो ये सिर्फ कुरान की तिलावत वो कर रहे होते तो थोड़ी ऐसा हो सकता था, तो समझने से होगा ना। इसी तरह मुस्लिम की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो अल्लाह के घर में बैठ के कुरान की तिलावत करते हैं और उसको समझ के पढ़ते पढ़ाते हैं, इसका मुजाकरा करते हैं, तो ऐसे लोगों पर अल्लाह ताला की तरफ से सकीनत नाजिल होती है, रहमत इलाही उनको ढांप लेती है, फरिश्ते उनको घेर लेते हैं और अल्लाह ताला के पास मौजूद फरिश्तों के दरमियान उनका जिक्र खैर किया जाता है। ये सिर्फ तिलावत से नहीं, ये इंसान गौर व फिक्र करे, समझे भी। हम तो अगर समझने दौरा कुरान के लिए बैठते हैं तो आधा टाइम सोए रहते हैं, पता ही नहीं कितना आगे निकल गया, और वो स्पीड में भी पढ़ते जाते हैं जो दौरा कुरान करा रहे होते हैं। इतनी स्पीड होती है कि जल्दी खत्म करना है, जल्दी खत्म करना, कभी बैठ के तदब्बुर करने का मौका ही नहीं मिलता। साल में एक दफा खोलना है वो भी इस तरह का, तो ये इसकी मंशा नहीं है, ये इसका तरीका भी नहीं है और ना ही ये रिक्वायर्ड है हमसे। देखिए क्या रिक्वायर्ड है, कि हम चाहे एक दफा पढ़ें मगर समझ के पढ़ें, समझ के। आयशा रज़ी अल्लाह तआला ना, उनके एक दफा नमाज में खड़ी नहीं थी, उनके भांजे आए तो देखा नमाज में खड़ी हैं और पढ़ रही हैं, फमन अल्लाह अलैना वक़ाना अज़ाब सुमूम, अल्लाह ताला ने हम पर एहसान किया और हमें बचा लिया अजाब से, इस लू के अजाब से हमें बचा लिया, और वो खड़े में खड़े में खड़े में वो पढ़ती जा रही है, यही बात यही आयत दोहराती जा रही है दोहराती जा रही है। उन्होंने सोचा मैं जाके ना ज़रा बाजार से हो आता हूँ, वापस आऊँगा तो फिर मैं देखता हूँ कि क्या। वो बाजार चले गए, वापस आ गए, देखा वहीं खड़ी वो ही पढ़ती जा रही है अभी तक। तो देखिए वो लोग उसको समझते थे, उसको दिल पे लेते थे, हमारे दिल पे उतरता ही नहीं, क्योंकि जब इतनी तेजी दिखा रहे हैं कि बस खत्म करना है, कितने कितने सफ़े रह गए आगे, पेज आगे पलटा पलटा के देखते हैं कितने सफ़े रह गए, अच्छा इतने रह गए फिर एक पारा खत्म हो जाएगा, ताकि मैं फख्र कर सकूं कि मैंने इतने कुरान खत्म कर लिए। तो जब भी तो हम फिर ख़त्म पे ख़त्म भी करते हैं तब भी हमारे अमल में रत्ती बराबर फ़र्क नहीं पड़ता, और हमारे दिल की हालत में भी नहीं फ़र्क पड़ता, हमारा ईमान भी नहीं बढ़ता। जबकि बताया गया कुरान करीम में कि जो अल्लाह पर ईमान लाने वाले हैं उनके दिल तो पिघल जाते हैं कुरान सुनते हैं तो, उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, हमारे कहाँ आंसू बहते हैं, तो धड़ाधड़ धड़ाधड़ जो स्पीड पकड़ी होती है, और इसके ऊपर बड़ा फ़ख्र है, मैं तो 25 मिनट में पारा ख़त्म कर लेती हूँ, अच्छा तुम्हारी इतनी स्पीड है। तो वो कुरान इसलिए तो नहीं आया था, वो भी ऐसे ही करते थे कि उनकी बस एक एक जहन में उन्होंने समा रखा था कि बस हमने ये कर लिया तो बस सस्ती एक शोहरत, ये जिसको कहते हैं ना शॉर्टकट्स, बस ये कर लो तो ये मिल जाएगा, ये कर लो चलो जी हमने शॉर्टकट्स ले लिए और बस अब हम भी बस बख्शे बख्शाए हैं, हमने भी शॉर्टकट्स बनाए हुए ना, ये 2.5 पारों का क्या है, शॉर्टकट ही है ना, उस जिंदगी में उसने कभी पढ़ा नहीं, अब वो दुनिया से चला गया, अब उसको हम भेज रहे हैं यहाँ से 2.5 पारे राहदारी के हैं, अल्लाह जाने कौन सी राहदारी हैं जो इनको पता होंगी। सूरह मुल्क कब्र के अजाब से बचाती है, भाई आपको खुद पढ़ने पे बचाती है, ये नहीं कि आप दूसरों के पीछे भेज रहे हो, हमारे घर में बरकत हो जाएगी, आ जाओ कुरान का खत्म कर लेते हैं, लेके लोगों को जमा कर लिया, खुद किचन में खाना बनाते रहे, सर पढ़ने के ऊपर इनको लगा दिया, उसके बाद खाना दिया और चलो फारे, या दुल्हन के सर के ऊपर लेके तो करके तो उसको रुखसत किया, बरकत रहेगी भाई इसकी जिंदगी में, और बरकत उसके पढ़ने से रहेगी, हमारे भी वही तरीके नहीं कर लिए जो इनके थे यहूद के, इनको किताब का कोई इल्म नहीं है, बस अपने खुद साख्ता, और एक बहिश्ती दरवाजा है उसके नीचे से गुजर जाओ, उसकी वो लाइन लगी होती है इतनी लंबी लाइन, वो जी खुलता ही साल में एक दफा है,
और उसके अंदर से गुजर गए, अब हमें क्या मुश्किल है, हम कोई अमल करें। जब इस तरह की खुद साधन अपने जहन से खुद ही बनाई हुई चीजें, घड़ी हुई चीजें, ये अवाम में मशहूर कर दी जाती हैं, अवाम को क्या मुसीबत पड़ी हुई है कि वो कोई अमल करे, कोई क्यों सच बोले, कोई क्यों ईमानदारी के साथ जिंदगी अपनी मुश्किल में डाले, कोई क्यों हलाल के ऊपर जिए, कोई क्यों अपनी नजरों को नीचा करे, क्या जरूरत है करने की, बहिश्ती जेवर दरवाजे से ही निकलते जाओ सब। तो अक्ल करें, हम वही काम कर रहे हैं जो यहूद ने किया। तो ये उम्मी है, अनपढ़ है, यानी अल्लाह ताला के नजदीक आप अनपढ़ हैं, चाहे आपके पास कितनी डिग्रियां हैं, अगर आपने इस किताब का इल्म नहीं लिया, ला यालमून अल किताब, इनकी डेफिनेशन क्या है, ये किताब का इल्म नहीं रखते। आज अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, किताब का कोई इल्म नहीं है, लेकिन समझते हैं हमसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल कौन है, और जिनके पास किताब का इल्म है ये तो बिल्कुल ही बेवकूफ समझते हैं उनको। तो इनके पास जब किताब का इल्म नहीं होगा तो अमानी ही होगी, याद रखें, क्योंकि किताब का इल्म आपको हकीकत में लेकर आता है, ये असलियत क्या है, और जब नहीं होता तो फिर आप भी हवाओं में ही रहते हैं कि हाँ बस जब ये कर लिया तो भाई ये मिल जाएगा, हम तो बस बखिया बखिया हैं, हम भी उम्मते मुस्लिमा में से हैं, उस दिन हमने आपसे सलम का दामन पकड़ के चले जाना है और ऐसे होना है, पढ़ के तो देखो उन्होंने क्या फरमाया, और इन्हु मिल्ला या तो नून, वो गुमान में ही है, अपने गुमानों में ही रहते हैं कि हम तो बस पार हो जाएंगे, दिमाग में हर एक ने अपने कोई ना कोई बनाया हुआ है, कोई जहन में कोई चीज रखी हुई है। अब जाहिर है जब इल्म ही नहीं होगा तो गुमान ही होंगे ना, ऐसे हो जाएगा तो ऐसे, एजम्पशंस पे, इसको गुमान एजम्पशंस पे अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, सोचें जरा, हमेशा की जिंदगी एजम्पशंस पे गुजारना कितनी बड़ी हमाकत है। फवैलुन लिल्लज़ीना यक्तुबून, तो वैल है किन के लिए, जो लिखते हैं, अल किताब भी ऐदीम, अब किताब को अपने हाथों से, यानी वो लोग क्या करते थे कि इधर उधर के किस्से कहानियां भी किताब में लिख दिए, अपने फतवे भी लिख दिए, इधर से उधर तरोड़ मरोड़ भी दिया, जो तारीख के वाकयात भी वो भी उसमें डाल दिए, इस तरह से करके उन्होंने तो किताब का कुछ उलिया ही बदल के रख दिया, किताब तो वो रही ही नहीं जो अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई थी। सुमा ये कुल ना, फिर लोगों कहते हैं, फिर ये नहीं बताते कि ये जो है ना ये अल्लाह ताला की तरफ से है और ये मैंने ऐड की है, कहते हैं हाजा मैंने इंदिल्ला, ये अल्लाह की तरफ से ही है, ये देखो किताब में भी लिखा हुआ, क्यों ऐसे करते हैं, लियश्तरू भी समनन कलीला, जैसे मैंने आपको कहा मकसद क्या होता है, दुनियावी फायदे, कि हमें नजराने मिले, हम फेमस हो जाएं लोगों के अंदर, शोहरतें इसी तरह मिलती हैं ना, जो आलिम मुफ्ती लोगों के ऐसे फतवे देता है लोगों को जिसमें वो उनको आजादी मिल जाए, हाँ जी कोई बात नहीं, आप मिक्स गैदरिंग करें, कुछ इससे फर्क नहीं पड़ता, सामने ऐसे बैठे हैं कोई इस तरह, और पर्दे वगैरह की क्या जरूरत है, तो पर्दे तो उस जमाने में होते थे ना, वो जिस वक्त ऐसे होता था कि वो मुनाफिक होते थे उस जमाने में, इसलिए पर्दे थे, और किसी ने तो कहा सूद भी, सूद उस जमाने में वो इसलिए था, लोग पिस जाते थे कर्जा लेके तो सूद इसलिए हराम किया, अब वो वाला सूद थोड़ी है, अब तो ये बैंकों का, हत्ता के एक ने तो ये तक कहा कि खिंजीर उस जमाने में बड़ा ही गंदा जानवर होता था, अब तो ये देखो साफ सुथरे हैं, वो साफ सुथरी जगहों पे उनको रखते हैं और बिल्कुल साफ सुथरे हैं, तो अब तो थोड़ी ही है, या अल्लाह, यानी कहाँ से ये बातें निकाल लेते हैं, क्या करते हैं, वही बात है कि ला यालमून अल किताब, किताब का इल्म नहीं, और फिर जाते भी ऐसे लोगों के पास हैं जहां से उनको मनमाने फतवे मिल जाए, तो कहते हैं वो भी उनको कह देते हैं हाँ अल्लाह ताला ने तो ये, देखे इस तरह थोड़ी है, वो तो उस जमाने में ऐसे था, अब तो ऐसे है नहीं, और ये लोग ऐसे ही करते थे लोगों को कि अपने मफाद की खातिर लोगों के मुताबिक उनको फतवे दे दिया करते थे, और उसको मंसूब अल्लाह की तरफ ही करते थे, कोई ये नहीं कहता मैं अपने तरफ से दे रहा हूँ, अल्लाह ताला की किताब में ही ऐसे, जैसे मैंने आपको बताया आज भी बिदात जो हैं या जितने भी शिरकिया अकायद हैं सारे कुरान से उन्होंने कहीं ना कहीं से ढूंढे में, चाहे वो कादियानी हो, चाहे वो इस्माइली हो, चाहे वो और कोई हो, चाहे वो कब्रों को पूजने वाले हों। अल्लाह ताला ने फरमाया वैल है उनके लिए, तबाही है, बर्बादी और वैल, जहन्नुम की वो वादी है जिसमें कहा जाता है अगर पकड़ पहाड़ भी डाल दिया जाए तो वो भी पिघल जाए, वो ऐसी वादी है, इतनी ज्यादा वो हीटेड प्लेस है कि जहन्नुम भी उससे पनाह मांगती है, वो इतनी खौफनाक जगह है। अल्लाह ताला ने फरमाया ऐसे लोगों के लिए जो अल्लाह ताला के कलाम के अंदर तहरीफ करते हैं, अल्लाह ताला के कलाम में चेंजेस करके मनमानियां करते हैं। देखें ये बहुत बड़ा गुनाह है, इसीलिए इसका अजाब भी इतना शदीद है कि जहन्नुम की उस वादी में डाला जाएगा। आप सल्लम ने फरमाया वैल, जहन्नुम में एक वादी है, काफिर इसमें 40 बरस तक उतरता चला जाएगा, तब भी उसकी तय तक नहीं पहुंचेगा, इतनी खौफनाक वादी है। तो क्यों है इतनी बड़ी सजा? देखें हम आम से लोग हैं, हमारी कोई हैसियत नहीं, लेकिन हमारे नाम से कोई जाके बात किसी को कह दे वो जी वो ये कह रही हैं, तो हमें कितना गुस्सा आएगा, भाई मैंने तो ये कहा ही नहीं है, तुमने मेरी बात पे जाके एक बात बना ली और इस तरह से कर दिया। हम इंसान होते हुए अपने लिए गवारा नहीं करते, तो अल्लाह ताला की कलाम के अंदर ऐसी बात करना ये कितनी बड़ी जुर्रत की बात है, एक मामूली बात नहीं है। इसीलिए बहुत केयरफुल रहना चाहिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाह ताला के नाम पे लगा के कोई बात बोलते वक्त, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे कोई बात लगा के कहना, ये जब तक आप पूरा कंफर्म ना हो मत कहें। कुरान में ये कहाँ लिखा हुआ है, जबकि वो कुरान में लिखा होता है, तो फिर जब इल्म ही नहीं है तो क्यों बोलते? और उन्होंने तो तहरीफ कर दी ना बाकायदा, कि उन्होंने तो खुद ही अपने हाथों से लिखा और कह दिया ये अल्लाह ताला ने लिखा। जो इन्होंने कमाई की है ना, जो भी फायदे उठाए हैं इन्होंने, दुनिया के थोड़े से फायदे ही मिल गए ना, ये भी बहुत थोड़े, समनन कलीला इसको कहा है, बहुत थोड़ी कीमत है, चाहे वो दुनिया जहान के भी उनको खजाने दे देना लोग, तब भी बहुत थोड़ी कीमत पे इन्होंने बेचा, इसलिए कि इसके बदले में जो अजाब है वो बहुत सख्त है। तो तुमने ये कीमत लेके अपने लिए वो अजाब मोल ले लिया जो इतना खौफनाक है, तो ये बहुत बड़ी जसारत है जो कोई करता है। वकालु लन तमस्सना नारु इल्ला अय्यामा मादूदा, वो कहते हैं हमें तो नहीं आग छुएगी मगर चंद दिन, यानी हम अल्लाह ताला के इतने चहीते हैं, हमें अव्वल तो हमने आग में जाना ही नहीं, अगर हम चले ही गए तो बस उतने दिन जितने दिन बछड़ा पूजा गया था हमारे अंदर उतने दिन बस जाएंगे, खुद ही ये भी खुद ही बना लिया वह, क्योंकि उनको इतना कॉन्फिडेंस था कि हम बहुत इल्म में और हम दीन में बहुत बड़े लोग हैं। अल्लाहु अकबर, कुल कह दीजिए, आप इनको जवाब दीजिए, अत्तखस्तुम इंदल्लाह अहदन, क्या तुमने अल्लाह से ताला से कोई अहद लिया हुआ है कि तू वो तुम्हें नहीं आग में डालेगा मगर चंद दिन ही डालेगा, ये तुम्हारे पास कोई अहद है? फलाई यखलिफ अल्लाह अहदहू, तो अल्लाह ताला फिर तो अपना अहद बिल्कुल नहीं तोड़ेगा, यानी अगर अल्लाह ताला ने तुम्हारे अहद तुम्हारे साथ किया हुआ है ना ऐसा, तो अल्लाह ताला अपना अहद तो नहीं कभी तोड़ता। इससे पता चलता है अल्लाह ताला वाकई जो उसने हमसे भी वादे किए हैं वो वैसे ही होंगे, अगर अजर के वादे किए हैं या किसी की चीज़ के ऊपर कितनी ये चीज़ पे ये मिलेगा, इस चीज़ के ऊपर ये सजा है, वो सब अल्लाह ताला के वादे हैं, कयामत का आना, जन्नत का होना, जहन्नुम का होना, ये सब चीज़ें हक हैं, सच हैं, और ये ऐसे ही होंगी, जिन आमाल पे बख्शिश के वादे हैं वो वैसे ही होंगे, क्योंकि अल्लाह ताला अपने वादे के खिलाफ नहीं करता कभी। तो फरमाया कि अगर अल्लाह ताला ने तुम्हारे साथ क्या कोई वादा किया हुआ है कि वो तुम्हें नहीं डालेगा आग में और तुम बस थोड़ी सी सजा भुगत के जन्नत में चले जाओगे? अल्लाहु अकबर, अम तकुलूना अल्लाह मा ला तालमून, अम या तकुलून, तुम कहते हो अल्लाह ताला पर जिसका तुम्हें इल्म नहीं, जिसको तुम जानते नहीं, तुम ऐसी बातें अल्लाह ताला पे लगाते हो कि हाँ हम नहीं जाएंगे आग में मगर थोड़े दिन। क्या मुसलमानों का भी यही अकीदा नहीं है? हम तो एक दिन निकल ही जाएंगे आग से, तो फिर क्या डर है, यानी उस इतनी देर के लिए आग में जाने को तैयार है, हैरत है इनके ऊपर कि कितने आराम से कह देते हैं, यहाँ पे और लोग जा रहे होंगे, हम भी थोड़ी देर, आखिर तो हम कलमा गुआ है ना, आखिर तो हमने निकल ही आना है। तो तुम से अल्लाह ताला ने कोई वादा किया कि तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा से भी फरमाया कि ऐ फातिमा, अल्लाह अकबर, आग से बचो, क्योंकि मैं अल्लाह ताला के हाँ तुम्हारे कुछ काम नहीं आ सकता। अल्लाह अकबर, तो तुम अल्लाह के जिम्मे वो बातें लगाते जिनका तुम्हें इल्म नहीं है। वो ये मुतमईन थे कि रसूल का इनकार करके भी वो जन्नत में ही चले जाएंगे, उनके अकीदे खराब थे फिर भी समझते थे कि इसके बावजूद हमें कुछ नहीं होना। तो हमेशा याद रखें कि अल्लाह ताला के ऊपर कोई बात नहीं जानते ना तो ऐसे ही ना कह दे अल्लाह ताला ने ये फरमाया, भला क्यों नहीं, मन कसब सईअतन, जिसने बुराई को कमाया, वह अहातत भी खतीअतुहु, और अहाता कर लिया उसको उसकी खता ने, यानी इंसान गुनाह करे और उसके बाद उस गुनाह से तौबा ना करे, उसी के अंदर अहाता कर लिया यानी उसके अंदर ही गर्क हो गया, उसको चारों तरफ से उस गुनाह ने घेर लिया, यानी वो गुनाह अब उसका लाइफ स्टाइल बन गया, वो गुनाह से निकलने को अब सोचता भी नहीं है, अब गुनाह उसके लिए वो बड़ी चीज ही नहीं रह गया, तो उसको घेर लिया ना उस गुनाह ने, वो को दूर करने की कोशिश नहीं करता, उसमें जकड़ा हुआ है वो। फौलाए का साबुन नारी हम फीहा खालिदून, तो ये आग के साथी हैं इसमें हमेशा रहने वाले, खास तौर पे ये शिर्क के बारे में, और भी गुनाह जो इंसान का लाइफस्टाइल बन जाते हैं और वो उनसे तौबा नहीं करता, तो उसके लिए भी जहन्नुम है, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक बात है कि इंसान कोई गुनाह करे फिर उसको जस्टिफाई करे और फिर ये सोचे मैं नेकियां भी तो इतना करता हूँ, अगर गुनाह कर लिया तो ये काम कर लिया तो क्या हो गया, आखिर मैंने इतने सदके किए हैं, इतनी खैरात, मैं फलां की भी मदद करता हूँ और मैं हर एक के काम आता हूँ और फिर मेरी ये नेकियां भी तो हैं, तो क्या हो गया अगर मैंने ये कर लिया, तो दुनिया तो बहुत कुछ करती है। अल्लाह अकबर, तो खुद ही फैसला कर लेते हैं कि भाई ठीक है, इतना हमने अगर गुनाह कर लिया तो हमें कुछ नुकसान नहीं देगा, ये खुद ही फैसला कर लिया और उसको धड़ल्ले से करते चले जाते हैं, हत्ता कि वो सही आ ढीठ बन के जब इंसान करता है और उससे निकलने का नहीं सोचता, हत्ता कि मौत आ जाती है और तौबा भी नहीं की उसने, तो जहन्नुम है। वल्लदीना आमनू आमिलु सालिहात, और वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए, उलाइका असहाबुल जन्नति हुम फीहा खालिदून, तो ईमान के साथ नेक अमल की शर्त है, ईमान नहीं है और सिर्फ नेकियां, बड़ी बड़ी नेक काम कर रहे हैं, बड़े बड़े अस्पताल और यतीम खाने बना रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं और चैरिटी बहुत है उनकी, कोई फायदा नहीं होगा, और ईमान है और अमले साले नहीं है, तो फिर भी बात मुकम्मल नहीं होती, क्योंकि हर जगह कुरान में ईमान के साथ अमले साले की ही तलकीन है। अब हाँ, आपने बनी इसराइल के उलमा को भी देख लिया और उनके अवाम को भी, अब देखें जो अल्लाह ताला ने उनकी तारीख का एक और रुख हमारे सामने रखा है, जो उनकी 10 कमेंडमेंट्स थी वो आगे आ रही हैं, 10 तो यहाँ पे नहीं कह सकते मगर यही थी जो 10 कमेंडमेंट्स में भी यही कहा गया था, ये अल्लाह ताला ने इनसे वादा लिया था, और वो क्या है, वह इद अखदना मीसाक बनी इसराइल, तो अब ये 10 कमेंडमेंट्स उनकी क्या थी कि हमने मीसाक लिया, पुख्ता वादा लिया था इनसे, अहद लिया था किस चीज का कि ये इसको निभाएंगे, पैगंबरों के जरिए अहद ले लिया था कि वादा लिया था कि ये इस इन अहकामात को पे पूरा उतरेंगे, ठीक है, ये शरीयत के अहकामात इनको मिले थे और हमारे लिए भी यही है, कैसे, क्योंकि बनी इसराइल के ऊपर जो भी उतरा वो हमारे लिए भी है, अनलेस के हमारे नबी ने उसके कह दिया हो कि अब ये एब्रोकेट हो गया, अब ये खत्म हो गया, तो यहाँ पे ये सिर्फ ये नहीं कि उनके बता के उनके ऊपर तो था और हम तो इससे एब्जॉल्व हैं, नहीं ये नहीं है, ठीक है, तो हमने अहद लिया, सबसे पहला अहद क्या लिया कि ला ताबुदून इल्लल्लाह, किसी की इबादत नहीं करनी सिवाय अल्लाह के। अब पहले हमें बता दिया गया कि वो गुनाहों के जो गुनाह को जिसने घेर लिया हुआ, तो वो असहाबुन नार, मैंने बताया कि सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है। शिर्क है सबसे बड़ा गुनाह। वैसे तो आपको पता है ना, इंसान एक गुनाह भी करता है और तौबा नहीं करता तो उसके दिल पे एक स्याह नुक्ता लग जाता है। फिर अगर वो फिर भी तौबा नहीं करता तो एक और गुनाह कर लेता है, तो फिर एक और नुक्ता लग जाता है। फिर भी तौबा नहीं करता, फिर और गुनाह करता, फिर और, हत्ता कि उसका पूरा दिल स्याह, काला स्याह होता है। और फिर अल्लाह ताला ने इसी के बारे में फरमाया सूरह मुतफ़िफ़ीन में, कल्ला बल रान आला कुलूबिहिम्मा कानू यक्सिबून, उनके दिलों के ऊपर जंग लग गया, बिल्कुल स्याह हो जाती हैं। लेकिन फिर भी वो सोचते थे कि हम फिर भी हम पार हो जाएंगे, तो अल्लाह ताला ने फरमाया लैसा बिमानी वला अमानी अहले किताब, तुम्हारी ख्वाहिशात से कुछ नहीं होना, ना अहले किताब की ख्वाहिशात से कुछ होना। जो बुरा करेगा यूजा भी ही, उसको उसकी जजा दी जाएगी। तो सबसे बड़ा गुनाह ये है कि इंसान अल्लाह ताला के साथ किसी को भी शरीक ठहरा दे। अल्लाह ताला का हक है कि सिर्फ उसकी इबादत की जाए जिसने सब कुछ अता फरमाया। तौहीद का यहाँ पे दर्स, और ये तौहीद वो चीज़ है जो हर पैगंबर इसी की दावत लेकर आया। सबसे पहली चीज हर पैगंबर की उसके अंदर थी कि एक अल्लाह ताला की इबादत करना। और इबादत में तजल्लुल भी है, यानी आजी, झुक जाना, सबमिशन, और मोहब्बत भी। जो इबादत समझता है मोहब्बत के बगैर है, वो इबादत तो नहीं होती, तो मारे बांधे की जोर जबरदस्ती होती है। इबादत तो मोहब्बत के साथ ही होती है, जो सबसे ज्यादा जिससे मोहब्बत हो और सबसे जिसके आगे इंसान झुक जाए। और जब मोहब्बत हो तो फिर कोई भी काम बोझ नहीं होता, फिर इंसान कहता है कि मुझे हुक्म हो और मैं करके दिखाऊं। अभी बल्कि हुक्म होता भी नहीं तो कहता है, चाको चौबंद होता है कि किस वक्त मेरे महबूब की जुबान से कोई बात निकले तो मैं उसको पूरा करूं। अल्लाह हो अकबर। लेकिन इंसान को शैतान ने हमेशा ये कोशिश की है कि इंसान शिर्क किसी तरह कर दे, क्योंकि शिर्क कर लेगा तो फिर उसकी हमेशा की जिंदगी खराब हो जाएगी, और मुशरिक जो शिर्क करने वाला है उसके लिए कोई निजात नहीं है, उसके लिए हमेशा की जहन्नुम है। तो ला ताबुदूना इल्लल्लाह, नहीं तुम इबादत करोगे मगर अल्लाह की, सिर्फ एक अल्लाह ताला की इबादत के लिए के तरफ बुलाया। जो अल्लाह ताला की सिर्फ इबादत करता है उसके साथ ये वादा है कि अल्लाह ताला की इबादत करने वाले को अल्लाह ताला अपने ऊपर ये समझता है कि ये उसका हक है उस बंदे का, कि अल्लाह ताला फिर उसको आग का अजाब ना दे। यही शिर्क इतनी बारीक चीज है कि ऐसे है जैसे चूंटी जो है काले पत्थर के ऊपर चलती है। इस तरह काली चूंटी का काले पत्थर पे चलना कितनी मख्फी चीज है। इस तरह से शिर्क अंदर क्रीप इन करता है। इन लोगों के लिए तो ये था, यहूदियों में तो बछड़े की मोहब्बत, जैसे पहले हमने पढ़ा कि पिला दी गई। और बछड़ा सिर्फ ये नहीं है, गोश पोश का बछड़ा नहीं होता, हर एक ने अपना कोई बछड़ा बनाया होता है जिसकी मोहब्बत उसके दिल के अंदर ऐसी पैवस्त होती है कि उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है, उसी को पूजना शुरू कर दे। किसी के लिए औलाद की मोहब्बत उसका बछड़ा है, इसी को अपने खानदान की मोहब्बत पिला दी गई है कि बस अपने मेरे खानदान ने कह दिया तो ये तो उनका कहना हर्फ आखर है। तो सिर्फ एक अल्लाह ताला की इबादत की तरफ बुलाया। अल्लाह हू अकबर। वैसे तो जितने भी गुनाह हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गुनाहों को हकीर मत समझो, वो जमा होके इंसान की हलाकत का सबब बन जाते हैं। जैसे एक इंसान लकड़ियां जमा करता रहे तो उसका अंबार लग जाता है, और वो आग लगा दे तो कितनी बड़ी आग लग जाती, बड़ी बड़ी चीजों को जला देती है। इस तरह हर गुनाह से ही बचना है। ये ना को सोचेंगे हम तो सिर्फ शिर्क से बचते हैं, अब वो हमारे लिए तो काफी हो गया, बस अब हम चाहे बाकी गुनाह करते रहें। शिर्क तो सबसे बड़ा गुनाह है। अल्लाह ताला की हर नाफरमानी से इंसान बचे, क्योंकि इबादत यही बात तो है इबादत के अंदर कि इंसान अल्लाह ताला का गुलाम बन के रहे। हमने इया के नाबुदू में पढ़ा था कि इबादत के क्या माने होते, और अल्लाह ताला के बाद इंसानों में किसका सबसे बड़ा हक है, वह बिल वालिदैन एहसाना, और वालिदैन का हक सबसे बड़ा है कि वालिदैन के साथ एहसान करो। एहसान ये नहीं अदले का बदला, एहसान ये है कि जितना किसी ने किया उससे बढ़ के उसको देना, हक से बढ़ के देना, ये होता है एहसान। ये नहीं इन्होंने मेरे लिए इतना किया, अव्वल तो हम उसके बराबर भी नहीं कर सकते, और हमें कहा गया एहसान करो उनके साथ, तो फिर कितनी बड़ी बात है, जितना उन्होंने किया उससे ज़्यादा। आप एक माँ की एफर्ट को देख लें, माँ पेट में अपने बच्चे को 9 महीने रखती है और उसके अंदर उसकी हालत कितनी बिगड़ती है, पहले उल्टियाँ और उसकी तबीयत खराब, फिर कमजोरी, फिर उसको लेकर बोझ को लेकर चलना, यानी उसकी जो वो 9 महीने होते हैं वो बस एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन में ही रहती है। फिर उसके बाद बच्चा पैदा हो जाता है तो दूध पिला रही है, फिर भी कमजोरी होती जाती है, उसके अंदर कैल्शियम नहीं रहती है, उसके और हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, बच्चा ताकत पकड़ता है और माँ की ताकत खत्म होती जाती है, यानी वो अपने समझ लिया अपनी ताकत उसके अंदर मुंतकिल कर रही। उसके बाद भी जब बच्चा दुनिया में आ जाता है, उस औरत की जिंदगी का महवर वो बच्चा बन जाता है, उसको खिलाना, उसको पिलाना, उसको सुलाना, उसको निलाना, उसको धुलाना, वो अपनी सेहत भी कुर्बान करती है, नींद भी कुर्बान करती है, आराम कुर्बान करती है, अपना वक्त दे देती है, अपनी ताकत दे देती है, अपने हर किस्म की शौक कुर्बान कर देती है कि अब मेरा बच्चा है, मैंने इसके ऊपर मेहनत करनी। और बाप को देखो, सुबह से शाम तक वो एक औलाद के लिए मेहनत करता है, जिनके तुम पे इतने एहसानात हो, जिन्होंने इतनी मोहब्बत से तुम्हें पाला पोसा, तुम्हें प्रोटेक्शन दी, तुम्हें हर अच्छी बुरी हर गर्मी सर्दी से बचा के रखा, और तुम्हारे ऊपर अपनी जाने निछावर करते रहे, तुम्हारा गंद वो साफ करते अपने हाथों से, तुम्हारे आगे पीछे होते रहते, तुम्हारी एक ख्वाहिश को पूरा करने के लिए वो बाप कितना भागता दौड़ता रहता। और ये एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बड़े होते तक यही सब सिलसिला चलता रहा। तो अब वो वालदेन इस काबिल है कि अब तुम उनके लिए करो, इसका भी सवाल होना है हमारे वालदेन के साथ, हमारे क्या रवैये, उनको अब चेंज करने की कोशिश ना करें कभी भी, क्योंकि वो अब हम उनको चेंज नहीं कर सकते। अब आप अपनी ये आदत बदलें, आप ऐसे क्यों करती हैं, वैसे क्यों करती हैं, ये क्यों बोलती, अब बस उनके साथ हुस्ने सलूक, कॉल में भी, फेल में भी, एक्शंस में भी, और बातों में भी अच्छे तरीके से साथ उनके साथ रहना, उनके आगे आवाजें ऊंची ना करना, वो बात करें तो उनकी बातों को ना काटते रहना, उनको हर्ट ना करना, उनके ऊपर खर्च करना, उनको खुश रखना, उनकी खिदमत करना, उनको टाइम देना, क्योंकि जब वो बूढ़े होते हैं तो तब तो बिल्कुल ही वो बच्चे बन जाते हैं। हाँ, सिर्फ ये है कि झुर्रियों वाला बच्चा होता है वो, और झुर्रियों वाले बच्चे की तरफ कोई कम ही मोहब्बत से देखता है, उन्होंने अपनी जिंदगी औलाद को दे दी होती है, आज औलाद के पास वक्त नहीं होता कि उनको अपनी जिंदगी दे। तो वालिदैन के लिए हमेशा दुआएं भी करते रहें, आप उनसे दूर भी हैं तो रब्बिर हम हुमा कमा रब्बा यानी सगीरा, क्योंकि आप उनके एहसान का बदला नहीं दे सकते। और वो सिर्फ पालते नहीं है उस वक्त तक कि बड़ा हो गया अब हम आजाद, चलो शुक्र है जान छूटी, नहीं, वो फिर भी तड़पते रहते हैं, औलाद का कोई भी गम उनको और बूढ़ा कर देता है, उनके हाथ उठते हैं दुआओं के लिए, तो औलाद के लिए सबसे पहले उठते हैं, कितनी भाग दौड़ है। इसीलिए ऐसा कोई भी रिश्ता दुनिया में और एग्जिस्ट नहीं करता जैसे वालदेन का होता। अल्लाह अकबर, अपने आप को थका देते हैं, अपने आप को घुला देते हैं, अपने जवानियों को ख़त्म कर देते हैं, अपने शौक और अपने मज़े सारे कुर्बान कर देते हैं औलाद के पीछे। हाँ, इनको सहूलतें मिले, इनको आराम मिले, इनको हर तरह की कंफर्ट में हम रखें, तो अल्लाह ताला ने उनको उनके अंदर ये जज्बा रख दिया होता है, इसलिए अब औलाद का काम है, औलाद के अंदर ये नहीं होता, उनको अपने आप को लेकर आना होता है इसकी तरफ के एहसान कर। वज़िल कुर्बा, और रिश्तेदार, रिश्तेदारों को भी यानी हक देने का कहा गया है, और रिश्तेदारों के बारे में आता है कि उलमा कहते हैं कि जो 4 पुश्तें पीछे तक आपके यानी परदादा बन गए, बाप दादा परदादा और उसे पीछे भी उनकी सारी की औलाद, अब ये सारे रिश्तेदार हैं। आप रिश्तेदारों के साथ क्या करो, खुशी गमी में उनके शरीक हो, उनको खाने की दावत दो, उनके साथ काटो नहीं, उनको कोई माली जरूरत हो तो उसके अंदर हो, उनको कोई और तरह की आपकी जरूरत हो तो उसमें आप उनके काम आओ, उनके लिए अपने आप को फारिग करो। ये नहीं कि वो घर पे आए उनको बिठा के खुद जाके कमरे में बैठ गए, ये कौन सी रिश्तेदारी निभाई जा रही। तो रिश्तेदारों के हक क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो चाहता है ना कि उसके रिस्क में फरावानी हो और उसकी जिंदगी में लंबी हो, तो उसको चाहिए कि रिश्तेदारों के साथ रिश्तेदारी निभाए। यानी रिश्ते को निभाने से इंसान यानी सिला रहमी करे, रिश्तेदारी निभाने से इंसान की उम्र में भी बरकत होती है और उसकी रिस्क में भी फराखी होती है। तो फिर बताएं, रिश्तेदारों से अब इंसान को तकलीफ भी पहुंचती है और हर कोई कहेगा भाई हमारे रिश्तेदार तो ऐसे हैं वैसे हैं, तो ठीक है तकलीफ पहुंचती है, लेकिन हमने इसलिए नहीं उनके साथ करनी कि कोई हमारे साथ क्या कर रहा है, हमने इसलिए करनी है क्योंकि अल्लाह ताला का ये हुक्म है और इसको निभाने से हमारा फायदा है, क्योंकि अल्लाह ताला का वादा है कि आपको रिस्क में भी फराकी होगी और उम्र भी आपकी लंबी होगी। और फिर किसके साथ एहसान, ये एहसान सिर्फ वालदैन के साथ नहीं, एहसान का वर्ड सबके साथ जा रहा है, ज़िल कुर्बा के साथ भी, यतामा के साथ भी और मसाकीन। यतीम कौन है, यतीम वो है कि जिसको अभी बालिग नहीं हुआ और उसके सर से उसके बाप का साया हट जाए, बाप फौत हो जाए तो वो यतीम है, उसके साथ भी नरमी करना, उनकी किफालत की जिम्मेदारी लेना, उनके माल की हिफाजत करना, उनके साथ नरम बात करना, उनको झिड़कना नहीं, उनके दिल पहले ही टूटे होते हैं, उनके साथ एहसान का मामला करना। अल्लाह हू अकबर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यतीम की कफालत करने वाला मेरे साथ ऐसे होगा और दो उंगलियां जोड़ के बताई, यानी इतने करीब होगा मेरे साथ। तो यतीम जो है, इसका आपने कभी सोचा कि कोई यतीम मैं तलाश करूं और मैं उसके साथ अच्छाई भलाई का मामला करने की कोशिश करूं? हम कहेंगे हमें तो मिलते ही नहीं यतीम कहीं, तो नहीं मिलते तो आप हिर्स तो रखें इसकी, जब हिर्स रखेंगे आप, हिर्स जिस चीज़ का इंसान को लालच हो, आपको देखें कपड़ों का शौक है ना, तो उसकी आप हिर्स रखते हैं तो कहीं ना कहीं से तो वो जोड़ा मिल ही जाता है जो आपको पसंद है, उसके लिए आप क्या क्या नहीं सर्च करते और किधर किधर नहीं पूछते और फिर किस किस से नहीं बात करते, तो मिल ही जाता है ना आपको। अगर ये हिर्स लग जाए कि मैंने यतीम के साथ हुस्ने सलूक करना है, तो वो भी मिल जाएंगे आपको। फिर मसाकीन, मस्कीन वो होता है जो मोहताज हो, तंग दस्त हो इतना कि वो मतलब हैंड टू माउथ बस उसका गुजारा ही चल रहा है, मुश्किलों से जिसको कहेंगे गुजारा चल रहा हैंड टू माउथ है। और मिस्कीन, अकेला मिस्कीन का लफ्ज आए तो इसके अंदर फकीर भी शामिल है, ठीक है, और अगर फकीर मिस्कीन अलग अलग आए तो अलग माने होंगे। तो माशरे में जो गरीब लोग हैं, माजूर लोग हैं, कई बेवाएं हैं, कई और हैं जो बेचारे अपनी जरूरियात पूरी तरह नहीं उनकी पूरी होती हैं और वो बस कितनी मुश्किलों से ही गुजारा कर रहे होते हैं, जरा सा कोई ऊपर उनके और बोझ आ जाए, कोई बीमार हो जाए, कोई कुछ हो जाए, कोई छत लीक हो जाए, कोई बिल ज्यादा आ जाए, तो उनकी जान मुश्किल में आ जाती है, तो उनके साथ भी खैरख्वाही का मामला करना, उनको माशरे के ऐसे बेसहारा मजबूर या बेकस लोगों के साथ अच्छा करना, ये नहीं कि उनको डांट रहे हैं डपट रहे हैं, तो पहले भी तुम्हें दिया था अब फिर आ गए हो मुंह उठा के जब चले आते हो ये है, तो आपसे कुछ भी नहीं दिया जाता तो अच्छी बात तो कर सकते हैं ना। देखें अमीर और स्टेटस वाले लोगों के साथ ताल्लुक बनाना तो सभी चाहते हैं, कमजोरों से तो कुछ नहीं मिलता, ना यतीम से कुछ नहीं मिलना ना मिस्कीन से, इनके साथ भलाई करना वो वाकई वही करेगा जो सिर्फ अल्लाह की खातिर करता है। और आगे है वकुलु लिन्नासे हुस्ना, अब हर एक के साथ ही, ये ना कुलु लिल मुस्लिमीना हुस्ना नहीं है, कुलु लिन्नास ना लोगों के साथ, लोगों में कौन कौन है, लोगों में चाहे मुसलमान है चाहे काफिर है चाहे वो अहले किताब है चाहे वो कोई कितना ही गुनाहगार शख्स है, कोई भी है, हुस्न में क्या है जिसमें सारी भलाई आ जाती है। नर्म बात करना भी आ जाता है, खैरख्वाही भी आ जाती है, भलाई भी आ जाती है, अब यानी अच्छे तरीके साथ हर एक के साथ बात करना, ये उसके अंदर आ जाता है। इंसाफ की बात करना, हक की बात करना, ये भी इसके अंदर आ जाता है। तो आप ये देख लें कि हर एक के साथ जब आपने बात करनी है, तो आपने ये नहीं देखना ये मैं बात जिसके साथ कर रहा हूं इसको मैंने किस तरह की, हम तो पहले नापते तोलते हैं ना इसका स्टेटस क्या है, इसके साथ कैसे बात करनी चाहिए। अगर तो वो अमीर है तो फिर तो बड़ी अच्छी तरह बात करें, और गरीब है तो फिर जैसे तैसे ही उसको करें। नहीं, हर एक के साथ अच्छाई के साथ बात करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में कोई आया, उसने दरवाज़ा खटखटाया, आपने पूछा कौन है, उसने बताया फलां फलां, आपने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाया ये अपने कबीले का बदतरीन इंसान है, क्योंकि आप उनको बताना चाहते थे कि ये ना हो कि कभी आप इसके ऊपर भरोसा कर लें, तो इससे मोहतात रहना है। फिर आप बाहर गए और उससे अच्छी तरह बात की, तो आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने आप वापस आए तो पूछा कि आपने अब तो बताया ये बदतरीन इंसान है, फिर आपने इससे अच्छी तरह भी बात की। आपने फरमाया बदतरीन इंसान वो है जिसकी बद अखलाकी की वजह से लोग उससे मिलना जुलना छोड़ दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अखलाक के आला पाए पे थे, आप तो बद अखलाकी नहीं कर सकते। तो फिर चाहे वो कैसा भी है, हमने उसके लेवल पे नहीं उतराना कि कोई अगर जैसा है हम उससे वैसी ही बात करेंगे, नहीं। सबके साथ इसको आप हाईलाइट कर लें, वकूलू लिन्नासी हुस्ना, आप इसने आपको उन्हें इसको कहीं लगाना है तो वहां पे लगा लें, क्योंकि ये सारे अहकाम हमारे लिए भी हैं। देखिए कलाम जो होता है ना इंसान का, इंसान की बात वो उसका पता बता देती है कि वो क्या चीज है। यही कलाम है जिसको कलमुन का मतलब पता है क्या होता है, जख्म, इसी से कलाम निकला है, क्योंकि वाकई किसी का कलाम कभी इंसान को जख्मी कर देता है। अगर हम अपनी गुफ्तगू का जायजा लें तो सोचें आज तक जो मैंने बोला है उसमें से कितना हिस्सा ऐसा था जिससे किसी का दिल खुश हुआ हो, और कितना हिस्सा ऐसा है जिससे मैंने किसी का दिल छलनी कर दिया हो, दुखा दिया हो, तकलीफ दी हो, दिल आजारी की हो। काम ही होता है कि हम ऐसी कोई बात करें जिससे किसी का दिल खुश हो जाए। बाज दफा ऐसी बातें बोल देते हैं जिसमें कोई तंज होता है, जिसमें कोई किसी की ऐब जुई होती है, जिसमें किसी को लगा देना, जिसको कहते हैं ना बात लगा दी, जिसमें लगा दी किसी को बात, जिसमें किसी के साथ कोई ऐसा ताने या तंज के तीर छोड़े के दूसरे का दिल ही छलनी हो जाए। तो हुस्ना में ना ये चीजें नहीं आती, झूठी बात भी इसमें नहीं आती, हर तरह का हुसन, खूबसूरत बात, इवन माथे पे बल डाल के बात ना करें। लेकिन जब दिल खूबसूरत होंगे ना, बातें फिर खुद ही खूबसूरत हो जाती हैं। दिल ही जब खराब हो तो फिर बातें भी वैसे ही निकलती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया छोटी से छोटी नेकी को भी हकीर ना जानो, जैसे फरमाया ना छोटे छोटे गुनाह को भी हकीर ना जानो, तो इसी तरह छोटी से छोटी नेकी को भी हकीर ना जानो, चाहे अपने भाई को मुस्कुरा के देखना ही क्यों ना। यानी हमारे जो फेशियल एक्सप्रेशंस है ना वो भी अच्छे होने चाहिए जब हम बात कर रहे हैं। बस फेशियल एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं कि वो ही बहुत कुछ बोल रहे होते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन ऐसे कि जैसे बड़े गुस्से के अंदर है कोई आया तो दूसरा वैसे ही डर जाता है बेचारा। बाज ऐसे होते हैं इतना रोब के साथ बात करते हैं कि वो भी एक पता नहीं अल्लाह क्या ये इस तरह बात कर रहा। बाज में इतनी ऊपर से जैसे किसी की आना, बाज में शिकायती, हर वक्त शिकायती रवैया, मुंह के ऊपर ही 12 बजे रहते हैं। बाद में मिस्कीनी, हर वक्त मुंह पे रखना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, स्माइल के साथ, तो वाइड स्माइल रखें अपनी। कौले हसन में ये आता है कि लोगों के साथ अच्छी तरह से खंदा पेशानी से बात करना, इल्म फैलाना भी इसमें है। आप जहां जाएं अपने जो पढ़ा होता है इसके चर्चा करें। देखिए आपको कोई नेमत मिले तो उसका खुश होकर लोगों को बताते ना मुझे ये मिली है, तो ये बहुत बड़ी नेमत है जो आपको मिली, इसका चर्चा करें। ये भी हुस्ना में आ जाता है। और हर वक्त एक बड़ी, जैसे कि मैं बहुत बड़ी शख्सियत हूं और मेरे तो आगे लोग कोई बात ना करें, इस तरह की अपनी शख्सियत रोबदार बना के इस तरह बैठने की भी ज़रूरत नहीं, डींगे मारने की भी ज़रूरत नहीं, शेखियाँ मारना, खुद को बड़ी चीज़ समझना, अपनी हर वक्त खूबियाँ बयान करते रहना, खुद ही बोलते रहना, किसी को बोलने ही ना देना, ये सारी हुस्ना के खिलाफ चीज़ें हैं। इसी तरह बिला वजह लोगों पर तबसरे करते रहना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला को तीन चीज़ें पसंद नहीं, बेमकसद गुफ्तगू, बोलते जाना बंद ही ना करना, गैर जरूरी सवाल जवाब यानी कीलो काल जिसको कहते हैं, और माल को जाया करना, ये तीन चीजें अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। तो हर वक्त यही कि बस गैर जरूरी बातें हैं ना लोगों को डिस्कस किए चले जाना, उसकी खोज में लाना, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, इसके बारे में जरा देखूं ये कहाँ रहता है, क्या करता है, किधर जाते हैं ये लोग, इसका बैकग्राउंड जरा चेक करूं, इसको जरा मैं देखूं, ये सारी बातें बेफायदा है, बेमकसद है, अल्लाह ताला को ये पसंद नहीं है। फिर जब कौलो फेल में तजाद, ये भी हुस्ना के खिलाफ, बोल रहे कुछ है कुछ और, बनावट बन बन के बातें करना, अल्लाह हु अकबर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया हर अच्छी बात सदका है, हर अच्छी बात सदका है, देखें ये भी सदका होता है जो आप अच्छी बात करते हैं, हर एक से बात करें उसके मकाम और मर्तबे का लिहाज करते हुए करें, वालदेन से एक तरह से करनी है, दोस्त अहबाब में आप थोड़ी यानी रिलैक्सेशन ले लेते हैं, लेकिन वहां पे भी ये जरूरत नहीं है कि वहां पे कुछ लोग इतने हद से गुजर जाते हैं कि बस दोस्त अहबाब हो गए तो आप जो मर्जी कह दो, कभी किसी का किसी चीज पे मजाक, कभी कुछ कर रहे हैं, हम उसका रिकॉर्ड लगा रहे हैं, हम तो बस ऐसे ही मजा ही कर रहे थे, ये हुस्ना के खिलाफ है। तो मोमिन जो होता है ना बड़ा डिग्निटी वाला होता है, ऑनरेबल शख्सियत होती है, ऐसे नहीं होती कि बस जो मुंह में आया बोलते चले गए, कुछ सोचा नहीं कि हम क्या बोल रहे हैं। जुबान एक बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन इस नेमत को संभाल के रखें। आप सरदार ने फरमाया सबसे ज्यादा लोग ना दो चीजों की वजह से जहन्नुम में जाएंगे, एक जुबान और एक शर्मगाह। ये जुबान ही इंसान को जन्नत के आला दर्जों तक पहुंचा सकती है, और यही जुबान जहन्नुम में ले जा सकती है, या वो पता है वो हदीस। तो जुबान खूबसूरत हो, आप किसी को प्यार से बुलाएं, अच्छे उसके नाम से बुलाएं, जिस नाम को वो पसंद करता हो उससे बुला लें, उसको क्या हर्ज होता है इसमें, जिससे आपको पता है कि ये खुश हो जाएगा। आप किसी को बेटी कह के पुकार लें, रानी कह के पुकार लें, मेरी शहजादी कह के पुकार लें, उससे उसका दिल खुश हो जाएगा, और जाएगा इधर आओ। अब देखिए लहजा भी, अल्फाज का चुनाव भी, टोन भी, सब चीजों से फर्क पड़ता है। तो इसलिए जब एक अच्छी बात कहना, तो ये नहीं कि सिर्फ नरम बात कह रहे हैं, बल्कि हर तरह से वो खूबसूरत होनी चाहिए, वो जिसको कोई कहे कि ये बड़ी खूबसूरत बात है। आपको पता है ना जन्नत के बाला खाने जो मिलने हैं लोगों को, वो उनमें वो लोग हैं जो सुबहान अल्लाह नरम बात करते हैं, शीरी कलाम, मीठी बात, जो मिठास होती है उसका पता चल जाता है ना, मिठास सिर्फ अल्फाज में नहीं होती, लहजे में भी होती है। हाँ ये नहीं कि सिर्फ अल्फाज तो मेरे अच्छे और ऐसे कहा के बस, और लोग तो खैर आज बहुत ही ज्यादा इस चीज को पकड़ के थे, नहीं जी हम अगर बोलते ऐसे हैं कोई बात नहीं, दिल की अच्छी हूं मैं, दिल की अच्छी हूं चाहे मुंह से जो मर्जी किसी को हर्ट करते रहे, तो ये बात नहीं होती। आप अगर दिल के अच्छे हैं ना, तो वाकई अगर दिल के अच्छे हैं तो वो जुबान भी अच्छी हो जाती है। तो अकीमुस्सलात और कायम करो नमाज को और दो ज़कात को। अब इनमें वालदेन के साथ एहसान भी करना, इसको भी हमने सोचना है, नमाज को कायम करना, नमाज कायम करने के अंदर नमाज के औकात की पाबंदी करना, ये सबसे ज़रूरी है कि उसको टाइम में पढ़ना, ये नहीं कि बिल्कुल जब टाइम जा रहा हो उस वक़्त हम नमाज के लिए खड़े हो जाएं। पहली उम्मतों में भी इससे पता चलता है नमाज और ज़कात फ़र्ज़ थी। तो एक तो कायम करने में सिर्फ पढ़नी नहीं है, कायम करने में क्या वक्त को पाबंदी करें, फिर दूसरी बात क्या है कि आप वुजू अच्छा करें, सबसे बिस्मिल्लाह से शुरू किया आपने, अच्छी तरह अज़ा को धोया, आपने इख्तिताम पे भी दुआ पढ़ी ताकि जन्नत के सारे दरवाजे मेरे लिए खोल दिए जाएं, और फिर उसके बाद आपने इत्मीनान के साथ नमाज पढ़ी, उसमें खुशू भी था, खूबसूरत तिलावत करने की कोशिश की, सारी खैरियत कायम करने में आता है। तो जी आपने कायम करनी है नमाज या सिर्फ पढ़नी है? जिसका सबसे पहला सवाल होना है क्या मतलब, और ज़कात अदा करें। सुम्मा फिर तवल्लई तुमने मुंह मोड़ लिया, इल्ला कलीला मिनकुम, मगर बहुत कम तुम में से थे जो के वाकई इस अहद को पूरा करने वाले थे अल्लाह ताला से। यानी अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा सारे के सारे ही बुरे, अब हमें, हम तो एक ही पेंट ब्रश से सबको ही लपेट लेते हैं ना कि ये कौम ये सारी की सारी ऐसे है, वो फलाने ये सारे के सारे ऐसे। नहीं, अब थे मुंह मोड़ने वाले, मगर कुछ ऐसे भी थे अल्लाह के बंदे जिन्होंने इस अहद को पूरा किया, हमने भी पूरा करना है इस अहद को। तो इसकी एक एक चीज को देखें। अब कलील ने क्यों पूरा किया, वहां तुम मुआरिदून और तुम एराजी करने वाले हो, तो हमेशा से इनकी यही तरीके रहे हैं, तो कलील ने क्यों किया? आप क्या सोचते हैं? इसलिए कि इसे इसमें लाइफस्टाइल बदलना पड़ता है ना, इनमें कई चीजें हमारी ख्वाहिशात से टकराती हैं, इसमें दुनियादाराना जिंदगी के ऊपर पाबंदी लगती है, पाबंदियां हमसे बर्दाश्त नहीं होती, हम तो मनमानी जिंदगी गुजारना चाहते हैं। लोग कहते हैं वो क्या करें फिर, दुनिया में भी तो रहना है ना, तो मार्स पे तो कोई नहीं रह रहा, दुनिया में ही सारे रहते हैं। लेकिन बात यह है कि हमने ये काम इसलिए करने हैं कि अल्लाह ताला को हमने राजी करना है और अपनी मर्जियां नहीं करनी, जमीन के ऊपर अल्लाह की मर्जी से ही चलना। दुनिया में किसने कहा है कि ना रहो, रहना इसी में रहना है, किसी ने रोका तो नहीं है इस पे रहने से। जब कहते हैं दुनिया में हमने रहना है, हम क्या करें, तो रहना तो इसमें है ही, लेकिन अल्लाह ताला की मर्जी से रहना, जैसे उसकी मर्जी है, अपनी मर्जियां नहीं करनी। तो इसमें जब हमारे लाइफस्टाइल से कोई चीज हमें उसके मुताबिक नहीं लगती, तो फिर हम तोड़ देते हैं, तो कहीं हम भी मुंह मोड़ने वाले तो नहीं बन रहे? तो अमल की बातें इसके अंदर हम सारी लें कि हमने आज अमल की बात क्या इसके अंदर इस सबक में सीखी है। एक तो हमने ये सीखा है कि अल्लाह ताला की आयात को अपने मन माने माने पहनाने बहुत बड़ा गुनाह है, और जानते बूझते ये करना बहुत बड़ा गुनाह है। दूसरी बात ये कि अल्लाह ताला तो अंदर के भी हाल जानता है, जब बहाने बनाने लगो ना, मैं तो अल्लाह ताला को ये कह दूंगी, मैंने तो जाके कहना है फलाने ने मेरे से कराया था, वो सारी बातें अल्लाह ताला सुन रहा है, तुम क्या सोचते हो उसको नहीं पता। और हमने उम्मीद नहीं रहना, हमें दुनिया में कोई कह देना अनपढ़ जाहिल, तो हम इतना बुरा मानेंगे कि इसने मुझे ये कह दिया, और अल्लाह ताला के हाँ हम उम्मीयून हो, ये कितनी शर्म की बात है। और आज 99% तकरीबन लोगों का हाल ये है कि उनको कुछ नहीं पता किताब में क्या लिखा, उम्मत यानी कितने मिलियन हैं, उनमें से कितने हैं जो कुराने पाक का इल्म रखते हैं। इवन इमाम मस्जिद का सर्वे किया गया तो उनमें भी सूरह फातिहा का तर्जुमा तक नहीं आता था, 80% को पाकिस्तान में ये सर्वे हुआ था। तो इसलिए उम्मी बन के तो रहना हमने है नहीं, हमने इल्म हासिल करना है, और विशफुल थिंकिंग में नहीं रहना हर वक्त के बस पता नहीं हमें तो कुछ नहीं होना, हम तो बस ये कर लेते हैं तो इस तरह, और खुद ही अपने फैसले करके बैठते हैं। और कोई ऐसा गुनाह जिसको हम तवज्जो नहीं दे रहे और हम समझते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता इसको करने से, क्योंकि मैं इतनी नेकियां भी करती हूँ और उस गुनाह के अंदर मैं अब डूब चुकी हूँ, अब मुझे वो गुनाह लगता भी नहीं है, उसने मुझे सराउंड कर लिया, उससे निकलना है मुझे। फिर ये जो सारे हैं शिर्क को देखना है कि कहीं शिर्क तो नहीं है, फिर वालदैन के साथ एहसान और रिश्तेदारों को तवज्जो देना, चाहे मेरी उनसे बनती है या नहीं बनती, इट डजेंट मैटर, ठीक है? तो बस रिश्तेदारों के साथ मैंने खैरख्वाही करनी है, अच्छाई करनी है, जब मेरी ज़रूरत हो मैंने उनके लिए हाजिर होना, और यतीम और मिसकीन और लोगों के साथ अच्छी तरह बात करना, कभी भी इतनी रिलैक्स ना हो जाएं कि अपनी ज़ुबान को खुला छोड़ दें कि जिसको जो मर्जी कहते रहें, चुभती हुई बातें कहना छोड़ दें, नमाज कायम करनी और ज़कात देनी। अल्लाह ताला इन पे हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और हम उन लोगों में ना हों जो मुंह मोड़ लेते हैं, اللہ تعالیٰ کے احکامات کے آگے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون